ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 16 संजाओ। विसृजशिरसि पादं व्यग्नहं चाटुकारैः अनुनय विदुषस्तेभ्यत्य दौत्यैर्मुकुन्दात्। स्वकृत इह विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजदकृतचेतः किं नु सन्धेयमस्मि। मृगयुरिव कपीन्द्रं विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानाम्। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांसवद्यः तदलमसितसख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। विसृजा छोड़ो, शिरसि सिर से, पादम मेरे चरण को, वेदनी मैं जानती हूं, अहम मैं, चाटुका रही प्रिय वचनों की रचना द्वारा, अनुनय विदुषः तुम मनाने में बड़े विद्वान हो, ते तुमको अभ्येत्या सीख करके दौत्य ही दूत के कर्म मुकुंदात मुकुंद से, जिन्होंने हम लोगों को मुक्त कर दिया, घर द्वार पति सास ससुर सबसे छुड़ा दिया, स्वकृत जिनके लिए यह इस ब्रज में विशिष्टा हमने छोड़ दिया, अपत्या बच्चों को पति पति को अन्य लोका और माता पिता भाई सास ससुर सबको व्यसृजात ऐसा निर्दय हम लोगों को छोड़कर छोड़ दिया। अकृत चेता हम लोग जो कुछ भी उसके लिए की, इसमें उसका चित्त कभी नहीं लगा, कभी याद नहीं किया कि इन गोपियों ने हमारे लिए क्या क्या किया है। तो अब किन्नो, अब क्या संधेयम अस्मिन, इस कृष्ण से क्या संधि करना है, यह कृष्ण के विषय में क्या जानना है, इसलिए तुम यहां से हटो। भौरा श्रीमती राधा रानी के चरण कमल के सुगंध से चरण में लौट रहा था, बैठ रहा था, उसे परम सुंदर सुवासित कमल समझकर एक बार राधा रानी ने कहा कि तुम मेरे चरण को मत छुओ। ये तो भ्रमर का स्वभाव है, थोड़ा उड़ जाता था, उड़ करके फिर आया और कमल समझ करके चरण में, चरण की अंगुलियों में बैठ रहा था। तो राधा रानी ये समझ रही हैं कि ये और मना रहा है, रो रहा है, बार बार गाता था और चरण की अंगुलियों में, उंगलियों की संधियों में जो बैठा, तो वे कहती हैं, सबसे पहले मेरा पैर छोड़ो, विसर्ज पादम, विसर्ज का अर्थ त्यागो, छोड़ो, शिरसि पादम, हमारे चरण को अपने सिर से पकड़े हो, तो उसे प्रणाम कर रहे हो, इसको त्यागो, जल्दी हटो। पहले तो कही थी कि मेरे पैर का स्पर्श मत करो, तो थोड़ा बेचारा उड़ गया था इधर उधर, और फिर आकर के चरण के सौरभ के लोभ से चरण में प्रवेश कर रहा है, अंगुलियों में प्रवेश कर रहा है, तो कहती है विसृज पादम, मेरे पैर को छोड़ो, कहां से छोड़ो, विसृज शिरसी, जो तुम सिर से, सिर पर लिए हो इसको। भौंरा बिल्कुल नीचे राधा रानी के चरण कमल अंगुलियों के नीचे आ रहा था संधि में, इसलिए कहते शिरसि पादम विसृज, मेरे चरण को तुम छोड़ो। मानो भौंरा कहता है कि स्वामी जी एक बार तो हमारा निवेदन सुन लीजिए, मैं दूत बनकर आया हूं तो मेरा निवेदन सुन लीजिए, इसके बाद जो कहना होगा कहो। क्या निवेदन करोगे, मुझे सब पता है, वेदनी अहम, अहम वेदनी, मैं जानती हूं, दूसरों को भले कृष्ण के बारे में पता नहीं होगा लेकिन मुझको सब पता है, क्या निवेदन करना चाहते हो, मैं सुनना ही नहीं चाहती, सब जानती हूं, और तुम अभी गए थे मुकुंद के पास ना, भौंरा जब बीच में उड़ करके चला गया था, तो राधा रानी ये भावना कर रहे हैं कि मुकुंद के पास, श्रीकृष्ण के पास गया था तो उन्होंने बताया ठीक है, तो जो मान करती है कहती है टच मत करो पैर, लेकिन तुम जाओ मनाओ मैं जानती हूं तुमको और तुम्हारे स्वामी को, श्रीकृष्ण को, और दोनों के सिंह स्वभाव को मैं पूरा जानती हूं, क्या जानती हूं नहीं बोली, मैं जानती हूं, तो अब मैं जानती हूं तो क्या जानती हूं, अब कृष्ण के सारे गुण और भंवरा के, मतलब ये भी भाव है कि मैं जानती हूं कृष्ण को और उद्धव को, तो भंवरे के उपदेश से बात कर रहे हैं, मैं जानती हूं, इसलिए हमसे कुछ बताने की जरूरत नहीं, चाटुकार ही अनुनय विदुष, तुम अनुनय विद्वान हो, कैसे रूठी हुई प्रिया को मनाना चाहिए इस विषय में तुम शिक्षा लेकर के आए हो। तो अनुनय विदुष है, दोनों का विशेषण है। श्री कृष्ण मनाने में बिल्कुल विशारद है, सिखाए होंगे कि ऐसे प्रणाम करना पहले चरण कमल में, कितना भी माना करें लेकिन प्रणाम करना, और इसके बाद खूब प्रयुक्ति रचना करना। चटुकारी का मतलब होता है चापलूसी, चापलूसी का अर्थ है प्रिय वचन की रचना करना, खूब बढ़िया बढ़िया बात बोलना। अरे व्यक्ति ढल जाता है, एक बार में न माने दो बार माने मान जाता है, तो इसको चाटुकारी कहे, चाटुकार। तो तुम मुकुंद से मुक्ति देते हैं या मुक्ति को भी कुत्सित करने वाला प्रेम देते हैं, उनसे सीख करके आए हो ना। श्री कृष्ण ने तुमको सिखा करके भेजा है कि ऐसे बोलना, ऐसे प्रणाम करना, यह करना, वह करना। तुम्हें जानती हूं, तुम चाटुकारी सीख करके आए हो, चापलूसी कैसे करनी चाहिए सीख करके आए हो। क्या दौत्य दूत के क्या क्या काम है, उसको कैसे किसी को मनाना चाहिए, संदेश देना चाहिए, तो उन कर्मों में तुम निपुण हो और अपने स्वामी से सीख करके आए हो। लेकिन यहां अब मानने का प्रश्न नहीं है, तुम कुछ भी करो। श्री कृष्ण को मुकुंद कहा जाता है, मुकुंद से राधारानी का तात्पर्य है कि उनके मुख में कुंद है, मुख में जो दांत है कुंद कली के समान सुंदर है, लेकिन भौरा कृष्ण केवल सुंदर भर हैं, सुंदरता है लेकिन हृदय बिल्कुल काला है शरीर की तरह। बड़े धोखेबाज हैं। तो उनसे तुम दूत की कला सीख करके आए हो, और विशेष करके और क्या सीखे हो, चाटुकारी बोलना, कैसे बोलना, ऐसे बोलना। इसलिए तुम कभी से बोल रहे हो कि आप मान जाइए, उन्होंने तो अपराध स्वीकार कर लिया है। पहले तो कहा कि नहीं, कोई क्या अपराध है, आप इतना क्यों उनके विषय में दोषारोप कर रहे हैं। तो फिर कह रहे ठीक है, तो श्री कृष्ण ने हमसे कहा कि हमसे तो अपराध हो गया, मैं मथुरा आ गया बिना पूछे, ये बहुत अपराध है, लेकिन हमारे तरफ से तुम चरण में गिरना, यही समझो मैं ही गिर रहा। तो राधा रानी कहती सब श्री कृष्ण से सीख करके आए हो, प्रिय वचन की रचना कैसे की जाती, कैसे कैसे बोला जाता है। वो बेचारे भन भन करके चरण के सुगंध के लोभ से मर रहा, तो ये समझती हैं कि फिर आ करके फिर से स्पेशल प्रणाम करने लगा और मना रहा। आखिर भंवरे ने मानो कहा, राधा रानी समझ रही हैं सब, भंवरा कहे को कुछ कहने जाए, लेकिन ये महाभाव में एक तुच्छ कीड़े में भी दूत की भावना कर रही है, उसकी गुनगुनाहट को सुन करके राधा रानी मानो ये ऐसा मानते हैं दूत कह रहा है, स्वामिनी जी मैं अपने आंख से देखा हूं, मैं मथुरा में ही रहता हूं, श्री कृष्ण सब समय श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपते रहते हैं, आपकी ही याद करते हैं और शीघ्र आएंगे। लेकिन आप जो उन पर दोषारोप कर रही हैं, इस तरह से किसी की निंदा करना ये ठीक नहीं, जब से मैं आया तब से अब कृष्ण की निंदा कर रही है। तो उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया आपका? बिना अपराध के किसी की निंदा करना, गाली देना ठीक नहीं है। क्या अपराध किया कृष्ण ने? मैं भी थोड़ा सुनना चाहता हूं, जाकर के बताऊंगा। तब राधा रानी कहते हैं, अपराध स्वकृत इह विशिष्टा पत्य पत्यन्य लोका व्यसृजत अकृत चेता किम संदेह। स्वकृत तो कृष्ण कृत, कृष्ण के लिए, स्वकृत का अर्थ श्री कृष्ण के लिए, तुम श्री नहीं लगा रही होंगी, कृष्ण के लिए, उस काला के लिए, इह इस ब्रज में जहां हमारा सारा समाज है, जहां बड़े सम्मान की बात है कुलवधू के लिए, यहां इस ब्रज में उसी के लिए, कृष्ण के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया। विशिष्टा अपत्य पति अन्य लोग, हमने पति को छोड़ दिया, धर्म अपना छोड़ा। किसके लिए छोड़ा? स्वकृत कृष्ण के लिए, उनके लिए। और अपत्य को छोड़ा, अपत्य मतलब बच्चे, ये गोपियों के बच्चे नहीं थे, परिवार के अन्य बच्चे जिसको खिलाती थी, दुलार करती थी, ऐसे बच्चों को ही त्यागा। हमने कभी परवाह नहीं किया आपसे। आपने जब श्री कृष्ण ने बुलाया वन में कहीं भी, तो हम सब कुछ छोड़ करके चल दिए। कभी इसकी चिंता नहीं कि बच्चा रोएगा नहीं खाएगा, या हमारे पति खाए पिए बिना रह जाएंगे, ये पति की सेवा करनी चाहिए, हमने तो सोचा ही नहीं स्वप्न में इस बात को, और छोड़ दिया उनके लिए। अन्य लोग का, और अन्य लोग भी जैसे माता पिता भाई भतीजा नैहर में, और ससुराल में हमने पति को छोड़ा, ससुर को छोड़ा, सास को छोड़ा, कभी इनकी चिंता नहीं किया। चिंता ये कहीं रहती थी कि मिलना है श्री कृष्ण से कुंज में, और कभी केवल नाम मात्र के लिए भी हमारा नाम रख दिए बांसुरी में, और दूर से बुला दिए कि हे श्री राधे, ये हे ललिते, हे विशाखे, हे तुम भद्रे इत्यादि, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बांसुरी में हमसे हमने केवल इतना ही सुना और कुछ भी छोड़ करके चल दी। तो जिनके लिए हमने ऐसा छोड़ा, जार लगी आमी मरी उलटी न चाय हरी, चाय मैंने देखना। जिनके लिए हम मर रहे हैं, तो मथुरा जाते समय हमें उलट करके देखे भी नहीं। जिनके लिए हमने सब कुछ छोड़ा, वे हमें छोड़ करके चले गए। व्यसृजत, व्यसृजत का से त्यक्तवान, हमें छोड़ करके चले गए। ये सम्मान वाचक शब्द अच्छा नहीं लगता है। जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़ा, वो हमें छोड़कर चला गया। अकृत चेता कृतज्ञ, कृत चेता कृते उपकृते, हमने जो कुछ कृष्ण के लिए किया तो हमारे प्रेम को कृष्ण ने नहीं देखा। अकृत चेता, कृत में उनका चित्त नहीं रहा। कृत क्या? अस्मत कृते, हमने उनसे इतना प्रेम किया, उनकी सेवा किया, पर ये सेवा त्याग उनके चित्त में नहीं है, इसलिए अकृत चेता अर्थात कृतज्ञ, किए हुए उपकार को भुला देना, इस तरह से निकले। कभी एक बार भी याद किए होते कि इन गोपियों ने हमारे लिए सब कुछ छोड़ा, तो वो आए होते। लेकिन इस तरह का कृतघ्न व्यक्ति सब कुछ भूल गया, अच्छा दूत कहता है जो हुआ सो हुआ, अब उनकी बुद्धि ठीक हो गई है, अब आपसे एक प्रार्थना है कि उनके साथ संधि कर लीजिए। तो राधा रानी कहते हैं अस्मिन कृष्ण में अब क्या संधि है, अब क्या संधि करनी है, हमने जो प्रेम करना था कर लिया, अब इनके साथ कोई संधि नहीं करनी है, अथवा अब कृष्ण के विषय में क्या अनुसंधान करना है। हम सब जानते हैं अब कुछ भी सुनना नहीं है कि वे अच्छे हैं ऐसे हैं ये हैं वो है, कुछ भी सुनना नहीं। इस उक्ति को, ये महा उन्माद में उक्ति है, श्रील रूप गोस्वामी पाद इसको संजल्प कहते हैं। संजल्प श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी टीका करते हैं संजल्प की। सौरभ लोभेन चरण तले प्रविशंतम अपि भ्रमरम। सौरभ के लोभ से चरण तल में प्रवेश कर रहे हैं। चरण तले प्रविशंतम अपि भ्रमरम, भ्रमर को ये राधा रानी समझ रहे हैं कि दूत है, तो भ्रमर कहता है लक्ष्मी कोटि निर्मंचनीय नख द्युते, निर्मंचनीय नख द्युते देवी, देवी आपका चरण कमल परम सुंदर है, यहां तक कि करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी इस पर निक्षावर हो जाएगी, न्योछावर हो जाएगी। तो हे देवी, त्वयि अपराध एव कृष्ण, कृष्ण आपके चरण में अपराध किए हैं, तस्मात् तुम कृपयैव क्षमस्व, आप अपनी कृपा से ही क्षमा कर दीजिए। इति प्रणमंतम तम मत्वा आह, भंवरे को प्रणाम करते हुए समझ करके श्री जी कहती हैं शिरसि धृतम मम पादम विसृज त्यज, अपने सिर पर रखे हुए हमारे चरण को छोड़ो, अर्थात दूरी भवत इत्यर्थ, तुम दूर हो जाओ। वेदमी अहम इति, मैं जानती हूं, लक्ष्मी आदि नहीं जानती होंगी, वो कृष्ण उनको ठग लेंगे, लेकिन जब पता हो गया है हमको कि कृष्ण क्या है, तो अब उनके उनसे न प्रेम करना है न कोई चक्कर में फंसना है। चक्रवर्ती पाद लिखे हैं उसको पढ़ना। मुकुंदात सकाशात अभ्येत्य, अभी अभी तुम मुकुंद के पास से आए हो, श्री कृष्ण के पास से आए हो, तो चाटुकार ही प्रयोक्ति रचना रूप ही, तो श्रीकृष्ण से सीख करके आए हो, वही सिखाए होंगे कि ऐसे बोलना ये बात बोलना ये बात बोलना, तो चाटुकारे सीख करके आए हो, और दूत दूत कर्म भी मनाने का उपाय कर रहे हो, तो वे अनुनय विदुष हैं और तुम भी अनुनय विदुष, तो सब सीख लिए हो और मना रहे हो, तो मैं तुम्हारे इस रहस्य को जानती हूं कि तुम सीख करके आए हो, तुम्हारे स्वामी के तुम्हारे सर्वम शिलाधिकम अहम वेद्मि, ये त्वाम वेद्मि ननु स्वामिनी, अगर भौरा कह रहा है तो प्राण कोट्यधिकेन तेन सह विग्रहेण अलम, अब तो स्वयं कहती रहती थी श्री कृष्ण हमसे बताए कि श्री राधा कहती है कि श्याम सुंदर हमारे कोटि कोटि प्राणों से भी बढ़कर के प्रिय है। तो जो इतने आपके प्रिय हैं उनसे विग्रहेण अलम, अभी मनमुटाव और रंजिश इसे काफी हो गया, अब इसको बंद कीजिए। अब स्वयं कहते हैं मेरे परम प्रिय हैं, तो मैं बीच में आप दोनों में संधि कराना चाहता हूं, आप संधि कर लीजिए। तब राधा रानी कहते स्वकृते तदर्थ विशिष्टानी त्यक्तानी अपत्यानी च पतयश्च अन्य लोकाश्च माता पित्रादयश्च जा भी अस्मा भी तत्र रास मुरली वादन समय अंतर्गृह निरुद्ध गोपी भी अपत्यानी त्यक्तानी तदानी तानी त्यक्त्वा एव अभिश्रितत्वात् अस्माभिः पतयः धन्यादि कन्याभिश्च पित्रादयः इति यथासंभवं गेयम् ता गोपी यो व्यसृजत कीदृशः अकृत चेता न विद्यते कृते उपकृते चेतो जस स अकृतज्ञ इत्यर्थ। न अहो ईदृशे अस्मिन् कठोरे किम नु संधेयम संधातुमर्हम अपितु न एव इत्यर्थ। तो इसका अर्थ कहते संकल्प का सोलुंठया गहनया कयाप्याक्षेप मुद्रया तस्या कृतज्ञता द्यादि संजल्प कथितो बुधै। श्री कृष्ण के विषय में सोलुंठ और गहन आक्षेप मुद्रा से उनकी अकृतज्ञता को जिसमें कहा जाए कही जाए तो उसको संजल्प कहते हैं विद्वान लोग। तो अत्र पूर्वार्धे सोलुंठा आक्षेप मुद्रा, विसृज शिरसिपादम वेद में हम चाठुकार है अन्य विदेश दौतर मुकुंदा। पूर्वार्ध में सुलुंठया गहनया कयाक्षेप मुद्रया, श्रीकृष्ण पर आक्षेप है जिसमें उलुंठ है, इसका अर्थ है ताना मारना, गहन गंभीर है, आक्षेप मुद्रा सब मिलाकर के इनके अकृतज्ञता आदि को कहा गया है। हमें छोड़ करके चले गए, हमने उनके लिए सब कुछ छोड़ा, पर इसका उनको ध्यान नहीं है, उनके चित्त में बात नहीं है, ये है कृष्ण की कृतज्ञता अकृतज्ञता। और चले गए व्यसृजत आसमान, इसमें है उनकी कठोरता है, कृष्ण बहुत कठोर हैं, हम लोगों को छोड़कर चले गए उनको दया नहीं आई, और अकृतज्ञ हैं। उत्तरार्ध है अकृतज्ञता आदि शब्दात, अकृतज्ञता आदि का इसका मतलब है निर्दयत्व परद्रोहित्व प्रेम शून्यत्व इत्यादि। श्री कृष्ण कृतघ्न तो हैं ही, इसके साथ निर्दय हैं, परद्रोही हैं और प्रेम शून्य हैं। ये भगवान में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो मान के समय में ऐसा ही भास होता है, तो ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि राधा रानी सचमुच के निंदा कर रहे हैं कृष्ण की, कोई निंदा नहीं है, लेकिन ये स्वरूप प्रकट हो रहा है, हमने कृष्ण के लिए सब छोड़ा है। कितनी सुंदर बात है, जो कुछ भी त्याग किया कृष्ण के लिए, परंतु वो किसी में आसक्त नहीं है, वो सबको छोड़कर मथुरा चले गए। ना इले मथुरा में जाके पद है तड़पत रह गई ब्रजनारी। एक स्त्री ने केवल चंदन दे दिया बस। ये गोपियों को ये पता है कि श्री कृष्ण बिना स्त्री के रह नहीं सकते, क्योंकि राधा रानी के चरण में गिरते रहते थे और बार बार कहते थे, प्रिय तुम ही मेरा जीवन हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं। तो प्रीतम के उसी स्वभाव की याद करके कहती हैं, तब कुब्जा में मन लग गया। जब यही करना था तो यही आ जाते, नंद बाबा की पतोह वही बनती, कुब्जा ही। हम लोगों को तो बचना है, कोई समाज में जाने ना कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। जब खुलम खुला उसी को रखना था तो उसको ले करके आ जाते, अच्छा होता है। नंद बाबा की पतोह आ जाती है पुत्र बाधुर। एक गोपी ने कहा अपनी सखियों से कि सुनो, कुब्जा पर रंज मत बनो, रंज मत हो, कुब्जा ने बहुत अच्छा किया है। सूरदास जी ने लिखा, बोलुए कुब्जा भलो कियो। कृष्ण ऐसा पत्र भेजे हैं कि ध्यान करना चाहिए, इस माया मोह में नहीं फंसना चाहिए, तो कम से कम कुब्जा तो प्रमाण है ना कि उसकी माया में फंसे हुए हैं। योग सिखाने से क्या होगा, इनका क्या स्वभाव है प्रेम करने का, स्त्रियों से बात करने का, इसको कुब्जा कम से कम बरकरार रखी है। बहुत अच्छा किया कुब्जा ने। कृष्ण का जो सनातन स्वभाव है वो तो प्रकट होता है। इस पद को भी हम लोग गाएंगे, इसमें है बोल कुब्जा भलो कियो। हमें कोई भी उनके साथ मेल मोहब्बत नहीं करना है, समझी नहीं करनी है, ये बात ही नहीं करना है। तो तुम जितना जल्दी यहां से भागो। श्री राधा रानी अपने हस्त कमल से भौरे को नहीं हटा रहे, नहीं तो हाथ पर भी आकर बैठेगा, क्योंकि सारा अंग ही कमल है, चरण कमल है, हस्त कमल है। श्री राधा रानी अपने दोनों पैर को नीचे करके और एक क्यारी में मेड़ पर टीले पर बैठी हैं और सब गोपियां उनके आसपास हैं, और श्री उद्धव जी भी थोड़े ऊंचे पर बैठे हैं, उनसे बात हुई। लेकिन राधा रानी महाभाव में ये भूल चुके हैं कि उद्धव मेरे सामने है। वास्तव में भगवान की व्यवस्था थी, उद्धव जी श्री राधा रानी के इस महान भाव को, ज्वलतम प्रेम को देखें, भगवान की इच्छा थी कि ये देखें। तो राधा रानी का यह अनुपम भाव उद्धव जी के सामने प्रकट हुआ, भौरे से बात कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भौरा आया था उनके पास तो उससे बात कर रही हैं, अथवा उद्धव जी को ही भौरा के बहाने से सुना रही हैं। तो उद्धव जी सब सुन रहे हैं, गोपियां सब सुन रही हैं, उद्धव जी सुन रहे हैं, और वो बेचारे भौरा कहे को कुछ सुनने जाए। कुछ भक्तों का कहना है कि श्री कृष्ण ही भौरा बन करके प्रिया जी के चरण में आ रहे थे। जो भी हो ये भी संभव है, भगवान भगवान भ्रमर के रूप में भी सांवले हैं ही, भ्रमर भी सांवला। असित, असित माने उजला नहीं, तो उजला नहीं तो उजला का विरोधी है श्याम है, काला है। राधा रानी बारम्बार इसी भाव बोल, हमें कोई संधि नहीं करना है, हम श्री कृष्ण के बारे में सब जान गई। जब तुम कह रहे हो कि श्री कृष्ण निर्दोष है, सबसे बड़ा दोष का प्रमाण ये है कि हमको छोड़ करके वे चले गए, इससे बड़ा दोष क्या होगा। तो वे कृतघ्न हैं, कठोर हैं, प्रेम शून्य है, निर्दय है, इसको संजल्प कर। तो फिर राधा रानी कहती हैं, भौरा इस जन्म के क्या मैं दोष गिना हूं, इस जन्म में तो उनमें निर्दयता, सठता, धूर्तता भरी है, कई जन्मों के बाद को हम जानती हैं उनके विषय। अभी इसके पहले जब ये रामचंद्र के रूप में आए थे, उस समय भी बहुत कठोर थे, इसी देह में जब आए तो ऐसे ही कठोर थे। और तुम जो मना रहे हो, कह रहे हो कृष्ण बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, तो ऐसी बात है कि भ्रमर तुम उनके अर्वाचीन सेवक हो, इस समय के सेवक हो ना, जब मथुरा में गए तब साथ हो गए, लेकिन हम लोग उनके जन्म जन्म की बातें जानती हैं, हमारी गुरु माता पौर्णमासी जी ब्रज में जो जोगमाया का अवतार है, पौर्णमासी जी ने हमको सुनाया कि ये श्री कृष्ण इसके पहले रामचंद्र के रूप में आए थे। तो उस अवतार में, उस जन्म में, अवतार नहीं कह रहे, उस जन्म में कृष्ण ने क्या किया। मृगयुरिव कपिंद्रम विव्यधे, लुब्ध धर्मा, लुब्ध धर्मा व्याध है, एक बहेलिया की तरह छिप करके और एक बानर को मारे, छी बानर को बहेलिया भी नहीं मारता है, इसलिए अलुब्ध धर्म है इसमें कहा गया। बहेलिया व्याध हंटर ये बानर को भी नहीं मारते, लेकिन कृष्ण का स्वभाव देखो, बहुत उच्च वंश में जन्म लिया था, सूर्य वंश में, और बहुत बड़े धार्मिक पुरुष का लड़का, और जा करके वन में एक बानर को मारा, बाली को मारा। मृगयुरिव कपिंद्रम, मृगयु इव बहेलिया की तरह छिप करके भगवान मारे थे, इसी पर राधा रानी कह रहे हैं बहेलिया की तरह मारे छिप कर। और वो भी कपिंद्रम, कपियों में, बानरों में श्रेष्ठ बानर राज बाली को मारे। बाली वैसे धार्मिक ही था, उसमें एक बहुत बड़ा अभिमान था, बहुत बड़ा अभिमान था, वास्तव में बलवान था वो, तो सुग्रीव जी से द्रोह किया था, सुग्रीव जी का राज छीन लिया था, उनका घर द्वार और उनकी पत्नी भी छीन करके रख लिया था और भगा दिया था वन में। एक जगह पर सुग्रीव जी रहते थे जिसको ऋष्यमुख कहते हैं, ऋष्यमुख पर्वत पर एक बार बाली को एक ऋषि ने साप दे दिया था कि यहां आएगा तो मर जाएगा, तो सुग्रीव जी को वो निर्भय स्थान मिला था, तो वहां कुछ बानरों के साथ अपने साथी जैसे हनुमान जी थे और सब, तो गुजारा करते थे, वन में रहते थे पहाड़ पर, राजधानी में अपने घर कभी नहीं गए, घर तो दखल कर लिया था बाली और पत्नी का भी अपहरण कर लिया था। यहां साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन मा। भगवान राम से सुग्रीव जी कहे थे मिलने पर कि यहां सांप बस आवत नहीं, सांप के कारण यहां नहीं आता है, फिर भी डर लगता है प्रभु जी, भगवान से कह रहे हैं सुग्रीव जी। ये तो घर छूटा है, सब कुछ रुपया पैसा धान स्त्री सब छीन लिया, ये वन में आकर रहते थे और भगवान भी वनवासी हो गए थे। सीता जी का हरण हो चुका था तो भगवान श्री राम अपने भाई के साथ सीता जी को खोजते हुए कभी नदी के कछार में, कभी कंदरा में, कहीं पर्वत में, झाड़ी में, भगवान महाकामी विरही की तरह खोज रहे थे, लीला दिखा रहे थे। किसी किसी कुंज में झांक करके देखते थे, लक्ष्मण देखो इधर छिपी होगी, हमसे बहुत मान करती थी सीता, मान करके इधर आ गई होगी, तो रावण ले गया था लंका में, लेकिन भगवान खोजते हुए जा रहे हैं। तो पर्वत शिखर से सुग्रीव जी ने देखा कि ये दो क्षत्रिय धनुष बाण देखे, तब ये लगता है, हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ये लगता है कि बाली ने हमको मारने के लिए भेजा है, इन लोगों को आप जरा पता लगाइए कौन है। तो हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में गए वहां और पूछे आप लोग कौन है, इतना सुंदर चरण कमल है, कोमल है और कठिन भूमि पर, कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। बहुत कठिन जमीन है, आपका चरण कमल कोमल है, कैसे विचरण कर रहे हैं, आप लोग हैं कौन। तो भगवान ने परिचय दिया कि हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा से हम वन में आए हैं, आए थे लेकिन साथ में सीता भी आई थी, तो सीता का किसी ने अपहरण कर लिया, क्या किया कुछ पता ही नहीं लग रहा है, आपन कथा कहा हम गए। विप्र हनुमान जी से कहते भगवान ने कहा कि मैं अपनी बात सुनाया और आप अपनी बात सुनाई कि आप कौन हैं। तब हनुमान जी अपने स्वामी को पहचान गए, कहे कि मैं आपका दास हूं, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैं आपको नहीं पहचान पाया, परिचय पूछना पड़ा। इसके बाद हनुमान जी दोनों को पीठ पर चढ़ा लिए, पैदल क्यों चलने दें, हनुमान जी अपार बल पवन पुत्र है ना, लेकर के हवाई जहाज की तरह उड़ते भी हैं। तो राम लक्ष्मण को भगवान तो ऐसे ही विरह से खिन्न थे, लक्ष्मण जी भी खिन्न थे, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, पीठ चढ़ा लिए और उड़ करके शिखर पर चले गए जहां सुग्रीव जी रहते थे। और सुग्रीव उसके पहले भागना चाहते थे, कौन आ रहे हैं, कहां से खोजते हुए, जब हनुमान जी की मुद्रा को देखे तो रुक गए। फिर सुग्रीव जी से मित्रता हुई भगवान की। एक पंडित जी एक कथा कहे थे, मैं सुना था, जौन तोर गति तौन मोर गति। एक बार एक पंडित जी के तीन लड़के थे, तीनों में एक खेती करता था, एक भैंस चलाता था और एक ऐसे भगवानपुर ब्लॉक श्लॉक में घूमता रहता था, बदला जाता था या कोई हमेशा काम धंधा देखना इधर। तो दोनों भाइयों के मन में ये बात हुई, ये घूमते रहते हैं, बैठे रहते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, भैंस चला रहे हैं, तो बड़ी दुर्भावना हुई, अब अलग होना चाहते थे, अलग होना चाहते थे। वो भी गए न बांट लिए। देखिए कोई बैठा रहता है, घूमता है, तो इसको कहीं नहीं समझना चाहिए कि कम काम कर रहा है, आदमी का अलग अलग महत्व होता है। तो उस देश के राजा को जरूरत पड़ेगी, एक बार वे कुछ कथा सुनना चाहते थे राजा, तो ब्राह्मण ही कथा कहते थे, तो ब्राह्मणों के यहां निमंत्रण गया। ये भी बड़े उच्च पंडित के लड़के थे तीनों, तो तीनों के पास निमंत्रण गया कि आकर के कथा सुनाना है। अब तो जो खेती करता था और भैंस चराता था पढ़े लिखे थे ही नहीं, कहां से कथा सुनाना। तो राजा के सिपाही पुलिस पकड़ करके उनको ले गए, चलिए कथा सुनाना है, पंडित है ना, हाँ चलिए कथा सुनाना है। दोनों को पकड़ करके ले गए, और बड़ा लड़का कहीं गया था घूमने, उसको भी निमंत्रण आया कथा के लिए। तो पहले वो बहुत व्याकुल हो गए, कहा कि हमारे भाइयों को यहां कैद करके क्यों लाया गया, याद नहीं रहे थे तो इसलिए इनको पकड़ करके लाई पुलिस। भी राजा को कथा सुनाना है, वह सुनने के बाद धन मिलेगा, ये मिलेगा, चलना चाहिए ना। तो वो बेचारा गया, बड़ा लड़का था वो, गया तो ये दोनों रो रहे थे, हाजत में डाल दिया था पुलिस, एक कारण से डाला था, एक बोल दिया कि राजा पूछी तो क्या कहूंगा, राजा पूछे तो मैं क्या कथा कहूंगा, कुछ जानता ही नहीं हूं, राजा पूछी तो क्या कहूं, रो रहा था, राजा पूछी तो क्या कहूं। तो वो दूसरा जो भैंस चला रहा था वो बोला, जोन तोर गति तौन मोर गति, जोन तोर गति तौन मोर गति। अब हम तो बड़ा लड़का गया और पूछा कि इनको क्यों बंद किया गया है, राजा को अरेर मारने से इन दोनों को बंद किया गया था। जब कथा कहां से कह सकते थे, अब जेल में बंद थे, राजा को गाली दिए। तो लड़का पहुंचा, राजा से डायरेक्ट भेंट किया, कहा कि सरकार हमारे भाइयों को जेल में क्यों बंद किया गया है। अरे मैं सुना कि हमको गाली दे रहे थे लोग, इतने बदमाश, एक कह रहा था राजवा पूछी तो क्या कहूं, यही यही शिष्टाचार है, ऐसे बोलना चाहिए। तो बड़ा लड़का बहुत विद्वान था, चतुर था, सरकार ये तो कथा कह रहे थे, कथा कह रहे थे, ये पुलिस वाले मोटी बुद्धि के समझे नहीं, वो कथा कह रहे थे। तो राजा ने कहा कथा कह रहे थे, हाँ कोई ये कह रहा था कि राजा पूछी तो क्या कहो, तो हां सरकारी रामायण की कथा है, जब भगवान श्री राम वन में जा रहे थे तो सुमंत जी उनको रथ पर चढ़ा करके ले गए और गंगा जी के तट पर, लेकिन गंगा जी के तट पर जाने पर भगवान राम ने कहा कि नहीं हम लौटेंगे नहीं, अयोध्या हम जाएंगे, आप जाइए हमारे पिताजी को समझा दीजिएगा। तो सुमंत जी अब पूरा रास्ते में रो रहे थे, रथ चल नहीं रहा था, धीरे धीरे घोड़े चल रहे थे, और रथ पर बैठे बैठे बेचारे चिंता कर रहे थे। जानते हैं सरकार बड़े लोगों के लिए भी कभी अरेर का शब्द बोला जाता है। रो रो करके सुमंत जी महाराज दशरथ के लिए कह रहे थे, राजा पूछी तो क्या कह, मतलब रथ पर राम को लाया नहीं, राम चले गए तो राजवा पूछी तब का कहो, रो रहे थे। अच्छा तो ये रामचरितमानस की कथा कह रहा है, हाँ कथा है सर, ये कथा है, ठीक है उसको इतना हजार रुपया देकर के लिख करो। ये फर्स्ट क्लास की कथा बेचारा कह रहा था, ये पुलिस वाले पकड़ करके लाए, उनको मुक्त करो, इतना हजार रुपया दो उनको इनाम कथा के लिए। तो फिर पूछा कि दूसरा, वो कह रहा था जौन तोर गति तौन मोर गति, तो इस राजा के भाई से बोल रहा था, लेकिन बड़े पुत्र ने बताया, बड़े भाई ने, कि सरकार वो भी रामायण की कथा कह रहा था। ऐसी बात थी कि बाली ने सुग्रीव को मार करके घर से निकाल दिया था, तो वन में रहते थे ऋषिमुख पर्वत पर, और भगवान अपने भाई के साथ सीता जी की खोज करते हुए, सीता जी का हरण हो गया था, तो उसी रास्ते से जा रहे थे। तो सुग्रीव से जब भेंट हुई, भगवान ने कहा कि पिताजी ने हमको वनवास दे दिया, हमें वन में रहना है 14 साल, हमारी स्त्री भी चली गई। इसी पर सुग्रीव बोले कि जौन तोड़ गति तोड़ मोड़। हमारा भाई इतना सुंदर रामायण की कथा कहा और आपने जेल में बंद करा दिया, राजा का तुरंत मुक्त कर, उसको भी इतना 1000 रूपये देकर के मुक्त करो। बहुत अपराध हुआ पंडित जी, आपके भाइयों को मैंने कारागृह में डाला। ये तो रामायण जानते थे, इनसे फिर कथा पूछा नहीं, या पूछा हुआ तो कहे होंगे, लेकिन दोनों भाइयों को मुक्त किया। इसमें एक आशय यह है कि कोई भाई हो, पढ़ा लिखा है, भले काम न करता हो, लेकिन समय पर जरूरत पड़ जाती है। ये दोनों रो रहे थे, जेल में बंद थे, और भाई जाकर मुक्त किए। इसीलिए कोई भाई यदि मान लीजिए किसी काम में तेज है, कोई किसी काम में तेज है, तो खेती करने वाले को संतोष करके खेती करनी चाहिए। ये नहीं सोचना कि वो घूमता रहता है, ये करता है वो करता है। यदि सचमुच के वो तेज है और घूम रहा है, तो कभी न कभी अड़ी घड़ी पर काम में आ जाता है। तो वही सुग्रीव जी ने कहा, जौन तोर गति तौन मोर गति। भगवान ऐसे बोले कि भाई राजा बना भरत, तो प्रेम से ही बोले, तो भाई के कारण मैं चला आया इधर। एक प्रकार से भाई ने घर से निकाल दिया, यही बात है ना। भरत जी नहीं रहते तो घर से कौन निकलता है, और इनके भाई ने भी मारपीट करके निकाल दिया। इनको खूब मारा था सुग्रीव जी को, बहुत अभिमानी था। इस तरह से परिचय हुआ था। तो भगवान ने सुग्रीव जी का पक्ष लेकर के बाली का वध किया। तो कुछ भी कारण हो, ये सब दोष दर्शन जब होता है तो गुण देखा नहीं जाता है, बल्कि गुण को ही दोष बताया जाता है, इसको असूया कहते हैं। तो राधा रानी कहती हैं, इसी जन्म के कृष्ण कठोर नहीं है, जन्म जन्म का अभ्यास है। जब वो रामचंद्र के रूप में जन्म लिए, तो बहेलिया की तरह एक बानर को मारे, एक बानर राज को, कपिंद्रम। कपिंद्र कहने का अर्थ है राधा रानी का कि जब कपिंद्र है तो अच्छा अच्छा बानर रहा होगा, सबसे श्रेष्ठ बानर। बहेलिया भी बानरों का वध नहीं करता, देखे हैं कहीं बानर को मारते हैं, नहीं। बानर लेकर के नचाते हैं कुछ मदाड़ी, लेकिन मारते नहीं, इतना निर्दय। पूर्व जन्म में क्षत्रिय बने थे और इतने श्रेष्ठ पुरुष के लड़के, और वो भी साधु भेष में थे, जटा धारण किए थे, बलकल पहने थे, साधु भेष में, तपस्वी भेष में, फिर भी राइफल लेकर के चलते थे, फिर भी मतलब अपना धनुष बाण लेकर के चलते थे। तो ये तो खैर मान लेती हूं कि वन में हिंसक जीव मिलेंगे और मिलेंगे तो धनुष बाण ठीक है, लेकिन वन में भी जाकर के ही बानर को शूट किए। ये कठोर है ना स्वभाव, पूर्व जन्म से है। यही दोष नहीं है भौरा, तो एक गिना रही हूं, दूसरा एक महादोष बता रही हूं। स्त्रियम अकृत विरूपम स्त्री जितह काम आनम। एक स्त्री को विरूप कर दे, विरूप मतलब विगत रूप, उसकी नासिका और कान का छेदन कर दे, काट दिए। उस जन्म की बात बता रही हूं, पूर्व जन्म की। तुमको पता नहीं तुम मथुरा में जन्मे हो और मथुरा में नया साथी बने हो, इसलिए कृष्ण के बारे में पूरा नहीं जानते हो। कह रहे हो कि बहुत अच्छा है, ये है, वो है। क्या है मैं जानती हूं। ऋषि जन्म करना ही, पूर्व जन्म का भी जानते हैं। बाली के वध के विषय में कथा है रामचरितमानस में, तो इसको थोड़ा सा मैं स्मरण करना चाहता हूं। बाली का वध किया भगवान ने तो बिल्कुल उचित किया, वो वध के लायक था, बहुत अभिमानी था, बदमाश था। पहला तो उसका ये अपराध था, वह अपने छोटे भाई की पत्नी को रखा था, सुग्रीव जी की पत्नी को छीन लिया था, और सुग्रीव का घर द्वार सब छीन लिया था, घर से निकाल दिया था। बहुत विनय किया था सुग्रीव, प्रार्थना किया लेकिन माना नहीं। तो जब भगवान गए ऋषिमुख पर्वत पर, वो तो गांव में नहीं जाते थे, कि शहर में नहीं जाते थे, किष्किंधा में भी नहीं गए, गांव से बाहर ही जो कुछ होना था होना था। तो सुग्रीव ने कहा कि मैं सीता जी का पता लगवा दूंगा, हमारे पास बहुत बानर हैं और इनको खोज खोज करके, बानर सब पेड़ पर उछलते हैं, कंदरा में पहाड़ पर खोजते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत बानर हैं और मैं आपकी मदद करूंगा। ये कहने के पहले ही भगवान ने कह दिया कि मित्र तुम चिंता मत करो, बाली को मैं एक बाण से ही मार दूंगा और ब्रह्मा शिव आदि के शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नवगर ही प्राण। सुनो सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बाण से मारूंगा। इसके पहले वो अगर भागना चाहे कि शिव जी की शरण में जाऊंगा, ब्रह्मा जी की, किसी की शरण में जाने से बच नहीं सकता है। भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया। तब सुग्रीव ने कहा कि मैं माता सीता का पता लगाऊंगा। ये संधि हुई। इसके बाद भगवान ने कहा, आलिंगन किया, उनमें बल अर्पित किया और कहा ठीक है आप जा करके बाली को ललकारो और मैं भी चलता हूं। ललकारो, जरूर गांव से बाहर आ जाएगा, राजधानी से बाहर आएगा। तो सुग्रीव का जोश बढ़ा हुआ था, भगवान का अभयदान मिला था। इसके पहले बाली इतना मारा था कि नाम नहीं ले सकते थे उनके नजदीक जाने का, लेकिन वही बाली भगवान राम का आश्रय, वही सुग्रीव राम का आश्रय पाने पर जाकर बाली को ललकारे। वो बहुत अभिमान में था, आया, इतनी हिम्मत बढ़ गई सुग्रीव की, वो आया और लड़ने लगा, बहुत जोर से घूसा मारा उनको सुग्रीव को। तो सुग्रीव छटपटा करके भगवान राम के पास भी फिर भाग आए। तो कहे कि मैं कहता था कि ये तो बहुत काल है मेरा, आप क्यों हमको भेज दिए। भगवान ने कहा कि असल में मैं देख रहा था छिप करके, लेकिन दोनों एक ही शकल के हो दोनों भाई, इसलिए पहचान नहीं पाया। पहचाना नहीं कौन सुग्रीव है कौन बाली है, एक जैसे लग रहे थे। हमने देखा है न्यूयॉर्क में दो बच्चियां हैं छोटी छोटी, एक है सुकृति और एक है भक्ति। तो सुकृति कौन है, भक्ति कौन है, मैं हर एक बार पूछता हूं वहां जाकर, कुछ पता ही नहीं चलता है भेद। दोनों एक समान है, ट्वीन है, दोनों एक ही साथ जन्म ली थे। बड़ी 7 मिनट बड़ी है, छोटी 7 मिनट छोटी है, बड़ाई छोटा यही है, लेकिन एक समान सकल। तो भगवान को भी ये भ्रम हो गया। भ्रम क्या हुआ, भगवान कोई लीला कर रहे थे। वो कहे कि मैं बस पहचान नहीं पाया। इसके बाद भगवान ने अपनी माला निकाल करके दिया, कहा कि इसको पहने रहिएगा तो पता लगेगा कि ये सुग्रीव है, मैं बाली का वध करूंगा। तो फिर गए सुग्रीव, बाली को ललकारे, बाली चला। बाली जब चला तो इस बार उसकी पत्नी ने उसको समझाया, नहीं पहले बार ही समझाया था कि सुनिपति जाहि मिला सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बल सीमा। पति क्यों सुग्रीव ललकार रहा है, क्योंकि इसका बल बढ़ा है, इसके आश्रय भगवान राम है, राम को तुम मनुष्य मत समझो, ठीक नहीं है, तुम मत जाओ मत लड़ो। कोशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सकहिं संग्रामा। सिखाया तारा ने कि कोशलेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, इनका नाम है लक्ष्मण और राम, और एक काल को भी संग्राम में युद्ध भूमि में जीत सकते हैं, आप मत जाइए मत जाइए, मना कर रहे थे। लेकिन बाली कह, बाली कहे सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारी है तो मैं हो बसनाथ। क्या चिंता करते हो, एक तो भगवान हमारा वध नहीं करेंगे, वो सबके समदर्शी हैं, सबको समान समझते हैं, अगर करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। इस तरह से कह दिया, मरूंगा भी तो कल्याण होगा, लेकिन यह बात वो हल्के स्वर में कहा, यदि मारेंगे भी तो मेरा कल्याण होगा, लेकिन उसको विश्वास था कि मैं सुग्रीव को मार दूंगा, तो निकल गया, पत्नी के बात पर ध्यान नहीं दिया, आकर के लड़ाई किया, भगवान ने देखा सुग्रीव हार रहे थे, हारने वाले थे, तब तक भगवान ने एक ताड़ वृक्ष के से छिप करके और धनुष पर बाण रख करके उसके ठीक छाती में बाण मार दिया और गिर पड़ा, गिरा फिर उठा बैठ गया छटपटा कर। तो उस समय भगवान राम सामने आ गए, बाली के सामने खड़े हो गए। तब इसके बाद लगा कहने, धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारे मोहि व्याध की नाई, आप हमको छिप करके कैसे मारे, आप तो धर्म के लिए अवतार लिए हैं, तो मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कौन नाथ मोहि मारा। अंत्याक्षरी में हम लोग खूब बोलते थे इसको मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कौन नाथ मोहि मारा, मैं आपका दुश्मन बन गया, जबकि हम लोग दोनों भाई एक कहीं पिता के संतान है, एक कहीं जगह रहा है। रामलीला में रामायणी जी कहते थे कि ये कौन आपकी सहायता किया, ये आपका क्या हित किया कि इसका पक्ष लिए। इस माता सीता का पता लगाना है, मैं जाकर के लगाऊंगा रावण को मार मुर करके मैं लाऊंगा, लेकिन अब इसका साथ कैसे दिए, तो बहुत डरपोक है सुग्रीव है। वो पहले तो भगवान ने जवाब दिए किस कारण से मारा, तो भगवान ने कहा अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनसठ कन्या समय चारी तीन ही कुदृष्टि बिलो कई जोई ताहि बधे कछ पापन होई। छोटे भाई की पत्नी और भगनी बहन और पुत्र की स्त्री पुत्र वधु, ये अपनी बेटी के समान है, चारों अपनी बेटी के समान है, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई ताही बधे कछ पाप न हो। इन पर जो कुदृष्टि डालता है कुविचार रखता है, कुविचार तक तो चला कुदृष्टि रखे तो उसका वध कर देने में कोई पाप नहीं है, मैंने ठीक किया है। और भगवान ने भी कहा कि तुम सुग्रीव को एकदम तृण जैसा समझते थे और नारी के बात पर ध्यान नहीं दिए, तारा ने क्या कहा तुमको, तुमने कान नहीं दिया सुना नहीं, इतने अभिमान में थे। तीन समान सुग्रीव वहीं जानी मारा चह से मूढ़ है अभिमानी, और यहां तक भगवान ने एक बात कहा कि मम भुज बल आश्रित तेह जानी मारा चह से मूढ़ है ये तो पाई। तुमको ये पता लग गया कि राम के भुजाओं के आश्रय में है वो, मेरे शरण में है, फिर भी तुम उसको मारना चाहता था। मेरे भुजा के आश्रय, मेरी शरण में जो है उसको भी तुम जान करके भी मारा करता था। यदि बाली ये कहता कि मुझे पता नहीं था, मान ले झूठ तो नहीं बोल सकता था, लेकिन यदि मान जो कहे तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने तुमको कहा था ना कि सुनपति जाहि मिला सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बल सीवा कोशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत स कहीं संग्रामा। ये पता था ना, तुम्हारी पत्नी ने कहा था ना। तब वो क्या कहता है, बाली ने कहा कि आप स्वामी हैं, भगवान हैं, मैं आपसे अब क्या दहस करूं, कर नहीं सकता, आपसे पार नहीं पा सकता, मुझे चौपाइया याद नहीं है लेकिन ऐसे कहा है। तो फिर ठीक है प्रभु, मैं पापी हूं, लेकिन इस समय भी पापी रह गया क्या, आपका दर्शन करके और आपके हाथ से आघात खा करके भी। प्रभु अजहू मैं पापी अंतकाल गति तो, क्या मैं अभी भी पापी हूं? तो भगवान ने कहा नहीं नहीं आप पापी नहीं हो, अब तो फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गए, अब तो पूरा भक्ति में हो, हमको तुम समझने लगे, हमारे प्रति प्रेम है, तो पापी नहीं हो। इसके बाद भगवान ने अपने हस्त कमल से बाली के सिर का स्पर्श किया और कहा कि ठीक है, यदि तुम जीना चाहते हो तो अभी मैं तुमको अचल कर दूंगा, नहीं मरने दूंगा। तो बाली कहा नहीं नहीं, मैं ये शरीर छोड़ना चाहता हूं। तो जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंत राम कही आवत नहीं, जन्म जन्म तक मुनि लोग जत्न करते हैं लेकिन अंततः राम उनके पास कभी नहीं आते, आप आते नहीं, वही प्रभु हमारे आंखों के सामने है। आप न दिखाई दे, आप में भक्ति न हो तो उस जीवन से आपका दर्शन करके मर जाना अच्छा है। तो उसने बहुत प्रार्थना किया, भगवान ने उसको सदगति दिया, भगवान के धाम गया। एक बात उसने मांगा कि प्रभु मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, लेकिन शास्त्र कहता है कि पुत्र पिता का ही रूप है, तो यह मेरा बेटा है अंगद, इसे आप अपनी सेवा में रखिए। इस तरह बाली ने तन तय किया। लेकिन जब क्रोध होता है, राधा रानी का जो भाव है, वास्तव में वे गुण गा रही हैं भगवान का, लेकिन ऐसे कह रहे हैं कि बहेलिया की तरह कपिंद्र को बाली, बानर राज बाली को मारे मारा, ये पूर्व जन्म से ही खराब है। और एक स्त्री की नाक कान काट लिया, ऐसा पूर्व जन्म में, और कैसी वो स्त्री थी, कामयाना, कामयाना कामम यानम जस्य हसा ताम, बेचारी काम वासना से आई थी और राम से ही अपने काम को पूरा कराना चाहती थी, जिस पर मोहित होकर के आई थी, और वही निर्दय उसकी नाक कान काट दिया जिससे कि दूसरे किसी के साथ इसका विवाह न होने पाए। अरे नहीं कर रहा था तो ठीक है, नहीं करते, उसका जबरदस्ती कर रही थी, जो सीता को मारना चाहती थी ये बात राधा रानी छिपा रही है कि नहीं बोल रही है, नहीं विवाह करना था तो नहीं करते, तो ऐसा क्यों किया कि उसके साथ कोई भी नहीं कर पाएगा। तो जाइए तब उसका पक्ष लेकर के और राम पर केस कराइए, सुरपणखा का पक्ष लेकर के कहे नाक कान काटे। राधा रानी कह रहे हैं कि एक स्त्री आई थी और उन्हीं पर मोहित हो, उसी पर मोहित होकर के आई थी, नाक कान कटवा लिया, इसलिए नाक कान नहीं कटवाए कि इसलिए उसको उसे विवाह नहीं किए कि साधु थे, वन में गए थे, जटा बढ़ गई थी और बलकल वस्त्र पहने थे। ये कह सकते थे भाई मैं साधु हो गया हूं, मैं ब्रह्मचारी अखंड रहूंगा और मैं विवाह नहीं करूंगा, अखंड ब्रह्मचारी बनेंगे, तो सीता को क्यों ले गए थे? राधा रानी कहती है स्त्री जीता, वास्तव में शूर्पणखा की नाक कान जो काटी गई तो सीता ने इशारा किया होगा, बेचारे सीता कहां को कुछ कहने जाए, सीता ने कहा होगा, उसने कहा होगा कि मैं हूं तो इसे विवाह मत करना है। अच्छा, नाक कान काटने के लिए उसी ने कहा होगा, तो सीता के वश में सीता का गुलाम बन करके और नाक कान काट, सीता परतंत्र स्त्री जीता। ये सब भगवान के गुण है, ये कथाएं हैं, सुनने में लगता है कि निंदा है लेकिन ये निंदा कुछ नहीं है। राधा रानी कृष्ण परवंज होकर के सब बातें कह रहे हैं, पूर्व जन्म से ही ऐसी कठोर आदत है, बानर का वध तो स्त्री का नाक कान काट लेना, तो इस जन्म में इतने खराब हुए कि हम लोगों को छोड़ करके चले गए, तो बहुत अच्छा हुआ कौन छोड़ कर चले गए, नाक कान नहीं काटे। वास्तव में अगर इस बात पर विचार कीजिए, किसी व्यक्ति में ये दुर्गुण हो, किसी स्त्री की नाक कान काट ले, तो कितना भयंकर आदत। ऐसे शूर्पणखा पर विचार करने पर वो नाक कान क्या गला भी काट लेना चाहिए, ऐसे बदमाश थी वो औरत। तो भगवान से कही कि मैं खोज करके तीनों लोकों में हार गई, मुझे कोई वर नहीं मिला, खोजूं भुवन दस्त, मैं सब जगह खोजी, हमारे लायक कोई पुरुष नहीं मिला, ताते अब लग रहो कुमारी, मनमा ना कछ तुम ही निहारे, तो तुमको देख करके कुछ मन माना कि तुम मेरे लायक कुछ हो। बाप ऐसे बोल रहे, भगवान क्या है और उनके आगे वो क्या है राक्षसी, कुछ मन माना, इसलिए हमारे साथ विवाह करो, कल कथा हो गई थी इसलिए मैं इसको नहीं बढ़ाना चाहता। अंत में जब ये देखी कि बड़ा लड़का बड़ा सीधा साधा है, सरल है, लेकिन इसके साथ एक व्यवस्था है कि इसकी पत्नी है, अगर पत्नी नहीं रहेगी तो हमसे विवाह जरूर करेगा, इसलिए सीता जी को खाने दौड़ी, ये वाल्मीकि रामायण में कथा है, राक्षसी थी, सीता जी को मारने चली कि लड़का फ्री हो जाएगा तो फिर हमसे विवाह करेगा, तब तक तो भगवान ने इशारा किया लक्ष्मण जी को, अपने अंगुली से ऐसे इशारा किया, नाक पर कान पर, लक्ष्मण जी समझ गए भगवान के साथी हैं, भाई हैं, भगवान की इच्छा को समझ गए, तुरंत तलवार खींच करके उसकी नाक कान काट दी। जो कुछ भी हुआ, नाक कान काटा गया शूर्पणखा का, ये भगवान राम की कथा है, त्रेता युग में सब समय तो फैला ही होगा, द्वापर के अंत तक भी ये कथा ज्यों का त्यों प्रसिद्ध, तब तो गोपियां चर्चा कर रही हैं। इतने दीर्घ काल तक भगवान की कथाएं चलती रहती थी, स्त्रियों तक को पता है कि भगवान राम ये लीला किए, आजकल के बोका लोगों को संदेह होता है, राम समुद्र बांधे थे कि नहीं बांधे थे, अब जाकर के नापेंगे देखेंगे। ये सब दुष्ट है, राक्षस, ये रावण के ही समाज के लोग हैं जो इस तरह से राम पर संदेह करते हैं। ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी असंभव नहीं है। उस समय गोपियों को ये बात सब मालूम थी, भगवान राम के बारे में पूरा जानती थी, कथाएं मालूम थी। गोपियां कभी कभी अनुकूल भी बोलती थी कि कृष्ण से रामचंद्र जी बहुत अच्छे स्वभाव के थे, इनके बारे में झूठ बोलना, कपट करना, गोपियों को छोड़ करके चले गए। तो उस समय गोपियां कहती हैं, एक पद है इसमें हम देखें, वो पद कहां है जिसमें श्री गोपी जन कहती हैं कि सीता पति अच्छे थे। हाँ, ये पृष्ठ 44 पर है, हरिशो भलो सो पति सीता को, सूरदास जी लिखे। चौलीस पृष्ठ पर 97 पद है, इसका पहला लाइन है कि हरिशो भलो सुपति सीता को, हरि से श्री कृष्ण से सीता जी के पति बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे। अभी कह रहे हैं कि वो उस जन्म में भी बिल्कुल गायब थे, कठोर थे, निर्दय थे। कभी किसी समय ये कही हैं कि हरिशो भलो सुपति सीता को, श्री कृष्ण से श्री कृष्ण की अपेक्षा सीता के पति अच्छे स्वभाव के थे। केवल इसलिए कह रही हैं कि वे स्त्री से प्रेम करते हैं। सीता जी चोरी चली गई तो पुल बना दिए, सेतु बनाए, कहां हम आप इतना प्रयास किए। हरि सो भलो सो पति सीता को, हरि सो भलो सो पति सीता को, बन बन खोजत फिरे बंधु संग, बन बन खोजत फिरे बंधु संग, बन बन खोजत फिरे बंधु संग, बन बन खोजत कियो सिंधु बीता को, सिंधु बीता, सिंधु को समुद्र को बीता भर कर दिए, बीता इतने बड़ा होता है, इसका मतलब बहुत छोटा किए, पुल बनाए, सेतु बनाए। बन बन खोजत फिरे बंधु संग, बन बन खोज कियो सिंधु बीता को, हरि सो भलो सो पति सीता को, हरि सो भलो सो पति सीता को। कोई गायक गा सकते हैं तो गाइए, मैं इसका अर्थ कर लेता हूं, इसके बाद गाइए। जब सीता जी चोरी चली गई तो श्री रामचंद्र बनबन में खोज रहे थे, इतना प्रेम था, और ये इतने कठोर हैं कि वन में कहां से खोजेंगे, छोड़ करके चले गए। ये राधा रानी कह रहे हैं, तुलना कर रही हैं, बन बन खोजत फिरे बंधु संग सिंधु कियो बीता को, रावण मार्यो लंका जारी मुख देखो सीता को। रावण का वध किए, लंका को भी जला दिए, हनुमान जी जलाए लेकिन भगवान राम को ही कह रहे हैं कि लंका जलाए, रावण को मारे और अंततः सीता जी का मुख देखे। दूत हाथ उन्हें लिखने पठाए और निगम ज्ञान गीता को, रामचंद्र जी रघुनाथ जी कोई सीता को ऐसा पत्र नहीं लिखे जिसमें गीता का ज्ञान सिखाया हो, योग करो, समाधि करो, ध्यान करो, हमको भूल जाओ, माया मोह में मत पड़ो, ये तो पत्र लिखे ना गोपियों के पास वो पत्र आएगा एक दिन, पत्र में उन्होंने हूबहू क्या लिखा है, क्योंकि हम उद्धव जी बोल रहे हैं तो उद्धव जी के लिए कहा जाए श्री भगवान वाच, तो भगवान ने जो भी पत्र में लिखा था वही उद्धव जी सुनाए। तो राधा रानी कहती हैं कि भगवान रामचंद्र ने, भगवान नहीं कह रहे हैं क्योंकि इन्हीं के अवतार बता रही हैं, अवतार भी नहीं, जन्म श्री कृष्ण का जन्म पहले हुआ था, तो उन्होंने दूत हाथ से उन्हें लिखी न पठाया, कोई पत्र नहीं लिखा और दूत के हाथ से नहीं भेजा, कैसा पत्र, निगम ज्ञान गीता को, पूरा वेदांत और गीता ये सब पढ़ाए नहीं सीता जी को, ये सूरदास जी ये सब निगम ज्ञान गीता को, अबधों कहा परेखो कीजे कुब्जा के नीता को, अरे क्या विश्वास किया जाता है, क्या बात कर रही हो, जो कुब्जा का मित्र बन सकता है। रामचंद्र तो ऐसे नहीं थे, सीता से प्रेम किए और ये ब्रज से जाकर के मथुरा में कुब्जा को गर्लफ्रेंड बना लिया कुब्जा के मिता को फ्रेंड कहा ना, मित्र को वो तो कहीं ऐसा नहीं किए, किसी दूसरी स्त्री से तो नहीं प्रेम किए, लेकिन मथुरा में जाकर कुब्जा के मित्र हो गए। जैसे चढ़त सबय सुध भूली ज्यो पीता चीता को, कोई मदिरा खूब तगड़ा पी लेता है तो क्या वो चेत करता है, भूल जाता है, जैसे चढ़त सबय सुधि भूली ज्यो पीता चीता किन्हीं कृपा जोग लिखी पठयो निलख पत्र ही ताको, बहुत कृपा किए तो पत्र लिखे, अरे पत्र रखो बस संतुष्ट हो जाओ। सखियां आपस में कहते हैं किन्ही कृपा जोग लिखी पठयो, पढ़ो इसमें क्या किए हैं कि अब आंखों को बंद करके आसन सिद्ध करो और हृदय में मेरा ध्यान करो। कहां पहले बांसुरी बजा करके मिलते थे तो अब लिख रहे हैं कि अब बाहर से दिखाई नहीं पड़ेंगे, आएंगे नहीं, अब ध्यान करो, पढ़ो पढ़ो क्या निरख पत्र रीता को, ताको उनके उसके पत्र को जरा पढ़ो। सूरदास प्रेम कह जाने, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के भाव में, गोपियां कहती हैं सूरदास जी के शब्दों में, अरे वो क्या प्रेम जानेगा, क्या प्रेम निभाएगा, घर घर में माखन चाटने वाला चुराने वाला वो प्रेम क्या करेगा। सूरदास प्रेम कह जाने लोभी नवनीता को नवनीत का लोभी, थोड़े से नवनीत के लिए जो घर घर चोरी करता था, और हम लोग कहते थे कि थोड़ा सा नाच दिखाओ तो बस नाच चालू करता था, छछिया भर छाछ पर, छछिया कहते हैं जो छाछ देने के लिए छोटा बर्तन होता है जिसे ग्वालिने नाप नाप करके देती हैं, मतलब पा भर का, पा भर छाछ के लिए जो नाचता था, भीख मांगता था, यहां तक कि चोरी करता था, वो क्या प्रेम निभाएगा। अच्छा थे रामचंद्र, यह नहीं है कि अब रामचंद्र से प्रेम करने के लिए बात कहती है, ये प्रेम तो इनका है कृष्ण से ही है, लेकिन कभी याद आ गए तो इस तरह से बोलती है। ठीक है, कौन जाएंगे, आप जाएंगे, ये जो श्लोक पढ़ा गया मृगैर्य कपिन्द्रम विद्यधे लुब्ध धर्मा, ये कौन जल्प है? अवजल्प मृगैरिव कपिंद्रम दिव्यधे, व्याध की तरह उसने बानर राजबाली का वध किया पूर्व जन्म में, और बल्कि अ भी है लक्ष्य अलुब्ध धर्म। अलुब्ध धर्म का अर्थ यह है बेचारा बहेलिया वध करता है किसी जीव का, तो वो तो अपनी जीविका चलाने के लिए उसके मांस को लेकर के बेचता है, और वो भी बानर का मांस नहीं बेचता है, बानर का मांस कोई खरीदेगा ही नहीं है ना, पक्का मांसाहारी भी जो होंगे बानर का मांस नहीं खाए, बानर का मांस लगभग आदमी का मांस होता है। इनको न बेचना था न खाना था, केवल व्यर्थ हत्या करते रहते थे, ये कहने का आशा। ये तो और क्रूर व्यक्ति हुआ ना, बिना मतलब के बानर का वध किया। और जो काम परवश इनके सौंदर्य से मोहित होकर के आए थे, उस स्त्री का नाक कान कटवा लिया। और इससे भी पहले हे भ्रमर, ये तो क्षत्रिय जब थे तब ये काम किए, इससे भी पहले जो हाई पोजीशन पर थे ब्राह्मण में जन्म लिए थे, उस समय जबकि ब्राह्मण का धर्म है शांति दया सत्य, लेकिन उस जन्म में इतना छल किए बलि महाराज से, ऐसा स्वांग बनाया, बौना ब्राह्मण बनकर के गया, ऐसी बातें बनाया कि बलि के दिमाग में क्या हुआ, तीनों लोक दे दिया केवल इसकी बातों में फंस करके। जन्म जन्म का ये बुरा संस्कार कृष्ण का है, एक तो भीख मांगना और दूसरा झूठ बोल करके, छल कपट से। क्या झूठ बोले कि मैं अपने तीन पैर से नापूंगा जमीन, इतनी ही हमको चाहिए, और बलि कह रहे थे नहीं नहीं और मांगिए और मांगिए, तो कहा नहीं बस तीन ही काफी है, हम भूमिहीन हैं, तीन पग जमीन रहेगी सोने के लिए जगह हो जाएगी ना, थोड़ी सी जमीन चाहिए। अपना छोटा सा पैर दिखाया और नापना हुआ तो एक पग से पूरा स्वर्ग, एक से पाताल, और तीसरे के लिए जगह नहीं मिली। ये छल कपट है कि नहीं, इस तरह से राधा रानी कह रही है। पौर्णमासी जी ने सब बताया है, कृष्ण इससे भी पहले क्षत्रिय में जन्म लिए थे और क्षत्रिय से भी पहले ब्राह्मण में जन्म लिए थे, कश्यप जी के माता अदिति के गर्भ, और इतना धोखा देने की प्रवृत्ति, इतना छल कपट। तो ठीक है, ले तो लिया ही, बलि ने दे दिया सब कुछ, तीनों लोक दे दिया, अपना देह भी दे दिया, इसके बाद बंधवा करके गिरा दिया। गरुण जी को भगवान ने कहा कि इसको बांधो, तो गरुण जी बांध दिए, भगवान के आज्ञा पालक बलि महाराज को मुसुक चढ़ा करके बांध दिया गया। इसके बाद भगवान बोले, तुम तीन पग भूमि देने के लिए कहा था, तो एक पग से मैंने पाताल तक नाप लिया, दूसरे से स्वर्ग तक ब्रह्मलोक तक, तीसरे पैर के लिए जमीन कहां है? झूठा कहीं, तुम अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा। तो बलि महाराज घबराए नहीं, बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक पग से स्वर्ग तक नापे, एक पग से पाताल तक, और आपका शरीर इतना बड़ा हुआ कि पूरा आकाश भर गया, पर मैं अपनी अपने वचन को झूठा नहीं होने दूंगा। मेरे पास जो मेरा था आपने ले लिया, अब मुझको भी ले लीजिए, तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए, मेरे शरीर को ले लीजिए, मतलब मुझे अपना दास बना लीजिए। तो भगवान उसी तरह से कहे ठीक है चलो, और उन्होंने तीसरा के बेरिया बलि जी देना सिर रोपी, तीसरे पैर के लिए बलि महाराज ने अपना सिर अर्पण किया और भगवान अपने चरण कमल को उनके सिर पर रख, तो सब कुछ ले लिया, बल आत्मसमर्पण किया बलि महाराज ने। ये भगवान की बहुत सुंदर लीला है। तो इसको राधा रानी अब उल्टा ले रही हैं, बलि इतने सज्जन थे दान दिए, लेकिन दान लेकर के ये नमक हराम कृष्ण बांध दिया उनको। दान देने वाले तीनों लोगों का दान दिया और ऐसे व्यक्ति को बंधवा दिया और गिरा दिया नीचे। सुतल लोक, सुतल लोक नीचे है, तो नीचे मतलब स्वर्ग से बहुत नीचे। स्वर्ग में राज्य था बलि महाराज का, पूरा भूमंडल था, तीनों त्रिलोकी था, लेकिन इस तरह से किया। तो जो ब्राह्मण होकर के ऐसा क्रूर कर्म करता है, क्षत्रिय होकर के चलो क्रूर कर्म किया तो क्षत्रियों का ऐसा स्वभाव होता है, लेकिन वो भी गलत कह रहे हैं। कोई बानर को मारना, स्त्री के नाक कान काटना, ये तो बहुत बड़ी भारी निर्दयता है। तो सखी ये भ्रमर, ये स्वभाव पहले का ही है। जब कृष्ण ब्राह्मण में जन्म लिए थे तो यहां ये काम किए, बामन बने। पौर्णमासी जी से इन्होंने सुना है कि कृष्ण ही बामन के रूप में, ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए थे। केशव धृत बामन रूप जय जगदीश हरे, जयदेव जी ने लिखा है। उसका पहला लाइन क्या है, छलय से विक्रमणे बलिमद्भुत बामन, पदनख नीर जनित जन पावन, केशव धृत बामन रूप जय जगदीश। ये सब प्रसिद्ध बात है, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबको पता है कि श्रीकृष्ण ने वामन अवतार लिया था, श्रीकृष्ण ने राम अवतार लिया था। ये श्रीकृष्ण, जयदेव जी कहते हैं केशव धृत राम शरीर, केशव धृत हलधर रूप, केशव धृत, केशव मतलब श्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण ने सब अवतार लिया था। कितनी प्रसिद्धि, प्रसिद्ध बात है। आज के आदमी को कहा जाए कि भगवान श्रीकृष्ण ने वामन रूप में पृथ्वी पर नापे थे तो कुछ लोग कहेंगे तो भगवान विष्णु अवतार लिए थे ना, विष्णु भी भगवान श्री कृष्ण के एक अंश हैं। विष्णु महान सही जस्य कला विशेषम गोविंद माध्य पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विष्णु भी जिनके कला विशेष है उनको मैं प्रणाम करता हूं। रामादि मूर्ति, रामादि सुमूर्ति, रामादि मूर्ति और राम आदि भगवत स्वरूपों में भी इन्हीं श्री राम की कला है, श्री कृष्ण की कला है। मैं इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण को सब लोग जानते थे कि ये भगवान है, सभी लोग, किसी को अविदित बात नहीं थी। जब इस पृथ्वी पर प्रकट थे उसी समय उनकी भगवत्ता प्रकट थी, उनका अद्भुत सौंदर्य और अद्भुत ज्ञान। आज जितने भी ज्ञानी हुए हैं या इसके पहले जितने ज्ञानी, शंकराचार्य आदि सब, ये भगवान कृष्ण के चेला हैं। सभी महात्मा गांधी, विनोबा जी, अरविंद, राधा कृष्णन और इस समय के भी जितने लोग हैं गीता पर ही बोलते हैं, गीता से अपनी बात का प्रमाण देते हैं कि गीता में भगवान ने ये कहा है। तो श्री कृष्ण सबके गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, और वह गीता भगवान ने कोई भोर में मनोयोग लगा करके नहीं लिखा, अपने मित्र को युद्ध भूमि में उन्होंने उपदेश दिया, वही सबसे बड़ा ज्ञान ग्रंथ है जगत। गीता के समान और कोई ग्रंथ नहीं है सिद्धांत बताने में। तो श्री कृष्ण का ज्ञान, श्री कृष्ण का वैराग्य सब कुछ बहुत प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण में वैराग्य कितना है आज सुन करके देख करके चकित हो जाएगा व्यक्ति कि जहां सत्ता के लिए इतनी लोलुपता है, हमारे हाथ में आ जाए, हमारे हाथ में आ जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो मथुरा का सिंहासन राज्य उनका था, श्री कृष्ण का था, लेकिन भगवान ने राज नहीं लिया, कंस के पिताजी को राज दिया, उग्रसेन जी को, और भगवान स्वयं एक दास की तरह उनके सामने खड़े होते थे और कहते थे हे देव आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। राज्य नहीं लिए, उग्रसेन जी का राज था। और द्वारका में उग्रसेन जी गए तो वही राजा थे वहां, कृष्ण और बलराम राजा नहीं थे। ऐसे सभी प्रजा मानती थी कि ये स्वामी हैं, लेकिन फॉर्मल पद पर वे नहीं थे। ये वैराग्य और ऐश्वर्य श्री कृष्ण का विदित था। चैतन्य चरितमृत में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की व्याख्या की गई है, उस श्लोक में कहा गया है कि श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं लोकपाल लोग, कहां प्रणाम करते हैं श्री कृष्ण, जहां चरण रखते हैं चरण पीठ पर, तो लोकपालों के इंद्र आदि के मुकुट आपस में लगते हैं, लगता है कि कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। एक बार की बात है, श्री कृष्ण द्वारका में थे तो उनका दर्शन करने के लिए श्री ब्रह्मा जी आए, द्वारपाल सब खड़े थे, उन्होंने उनसे पूछा, वे कहे कि मैं द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूं, तो लोग जाकर के भीतर भगवान से कहे कि ये चार मुंह वाले ब्रह्मा जी आए हैं और वे आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान ने कह दिया जाकर पूछो कौन ब्रह्मा, क्या आईडी है उनकी, कौन ब्रह्मा। तो प्रतिहार द्वारपाल जाकर के पूछा ब्रह्मा जी से, द्वारकाधीश जी पूछ रहे हैं कि आप कौन ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी का तो दिमाग एकदम खौफ हो गया, क्या हमारे अलावा भी कोई ब्रह्मा है, वो तो जानते थे कि मैं ही एक ब्रह्मा हूं। तो थोड़ा झुंझला करके कहे द्वारकाधीश को क्या हो गया, कौन ब्रह्मा के वो पूछने लगे। तो कह दिए जाकर कह दो सनत कुमार के पिता ब्रह्मा आए हैं, चार कुमार बहुत प्रसिद्ध हैं, उन चारों कुमारों के बाप आए हैं, ये कह दो पिता आए। तो प्रवेश ठीक है, प्रवेश किया, कराया गया, उन्होंने जाकर कहा कि सनत कुमार के पिताजी हैं, बता रहे कि हमारे चार बेटा हैं, और भी बेटा है लेकिन चार का नाम बताए। ठीक है ठीक है, आने दीजिए। भगवान ने बुलाया तो ब्रह्मा जी साष्टांग दंडवत किए, अपने मुकुट के अग्रभाग से चरण पीठ को नमस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण बोले अच्छा आप ठीक से आए ना, और सृष्टि आदि ठीक हो रही है ना। तो ब्रह्मा जी कहे जी आपकी कृपा से सब ठीक। तब तक ब्रह्मा जी देखे कि आठ मुंह वाले ब्रह्मा आए और शरीर का साइज भी उसी अनुपात में बड़ा मोटा, आठ मुंह वाले आए, वे प्रणाम किए, प्रणाम करके खड़े हो गए, तब तक सोलह मुख वाला ब्रह्मा आए, वो खड़े हुए तब तक बत्तीस मुख वाला ब्रह्मा, चौसठ मुख वाला ब्रह्मा, इस तरह से हजारों मुख वाले ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की लाइन लग गई, कितने ब्रह्मा, तो वे लोग आए, जब ब्रह्मा आ गए और ये ब्रह्मा अब तो बिल्कुल छोटे शरीर वाले लग रहे थे, पहला ब्रह्मा। इसके बाद रुद्र आए, उसी प्रकार से अब रुद्र जिनके पांच मुख हैं, तो कोई दस मुख वाला, बीस मुख वाला रुद्र आ रहा है। तब इंद्र आए, इंद्र आए तो उनसे भी विशेष तेज वाला शरीर वाला एक दूसरा ब्रह्मा आए, तीसरा ब्रह्मा आए, ये आए वो आए, कई लोग आए, सूर्य आए, चंद्रमा आए, कई देवता आए। तो भगवान का तो चिन्मय भवन है, वो सुधर्मा सभा, उसमें वो खड़े हो रहे थे लोग, सबसे उनके अनुसार भगवान प्रश्न करते थे और प्रणाम करते थे, तो ठीक है ना, ठीक, उनसे पूछते थे कि जो काम करते हैं उसी के बारे में पूछते थे, आप अपने विभाग को ठीक से संभाल रहे हैं ना, हाँ ठीक से चल रहे हैं आपकी कृपा से। तो ये ब्रह्मा जी जब खड़े हुए, पहला ब्रह्मा जी जो आए थे इन सब के बीच में, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे खड़े हुए पहला ब्रह्मा जैसे विशाल विशाल हाथियों के बीच कोई खरगोश खड़ा हो, ऐसी दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, नीचे सुनकर चकित हो गए कि अरे बाप रे बाप, हस्ती गण बीच जैसे शशक का संकित, शशक में खरगोश को कह, चकित हो गए कृष्ण का ऐश्वर्य देखकर, वैभव देखकर। तो ऐश्वर्य है और कृष्ण का वैराग्य, कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण का धाम, कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण की कीर्ति, जस, ऐसा आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं सुना गया जिसके जीवन काल में इतना बड़ा जस उसे मिला हो, इतना बड़ा काम किया हो, इतना कीर्तिमान स्थापित किया हो। जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उस यज्ञ में केवल पृथ्वी से ही लोग नहीं आए थे, उच्चतर लोकों से भी आए थे, देवता आए थे। और उस समय ये सुविधा थी, जैसे इस समय सुविधा है कि एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं, तो उस समय इंटर प्लानेटरी सुविधा थी, इस लोक से लोग स्वर्ग में जाते थे देवलोक में, और देवलोक से लोग आते थे यहां। आपने सुना होगा महाराज दशरथ गए थे स्वर्ग में सहायता करने के लिए कई कई जी के साथ, महाराज मुचकुंद गए थे, तो देवता लोग आते रहते थे, देवता भी आकर के उस राजसूय सभा में बैठे थे। इतना बड़ा जस, ऐसे आज कितना भी कोई बड़ा जसस्वी हो तो इस पृथ्वी पर के देश में उसका नाम फैलेगा, ज्यादा फैलेगा, तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, हो सकता है नाम जाए। और वो भी नाम किस लिए जाएगा, तो बहुत अच्छा नाटक करता है, नाचता है, अभिनेता है, यही नाम जाएगा ना, या चाहे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, ज्यादा से नाम जाएगा, लेकिन स्वर्ग में इसका नाम कोई जानता भी नहीं होगा। देवताओं के लोक में यहां के प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर और राष्ट्रपति, इन लोगों का नाम भी लोग नहीं जानते होंगे, जैसे हम लोग नहीं जानते हैं। यदि मान लीजिए कुछ कीड़े हैं और उनका सरदार कोई है, तो हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता नहीं है कि मच्छरों का मालिक कौन है। वैसे देवताओं को तो ये पता ही नहीं है कि इस पृथ्वी पर कौन क्या कर रहा है, कौन मालिक है, कौन क्या है, इतना बड़ा स्टैंडर्ड है उनका। पर श्री कृष्ण का जस सारी जगह फैला हुआ था, सब जगह, पाताल में बलि महाराज के पास फैला हुआ था, सुतल लोक में दैत्यों के पास, प्रहलाद महाराज के पास, और बलि महाराज के पास जस फैला था। जस किस चीज का जस? अद्भुत कर्मत्व, अद्भुत कर्म करने का जस। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण 7 दिन के थे जिस समय, तो इतना विशाल पर्वत उन्होंने उठा लिया, हाथ में धारण कर लिया, इतना कीर्तिमान कौन स्थापित करेगा। और सर्वत्र बात फैली, इस बात की खबर सबसे पहले इंद्र को ही मिली कि आपकी पूजा रोक दी गई और आपको जो भोग बना था सब पहाड़ को खिला दिया गया। वो तो खौफ हो गया, बिल्कुल गर्म दिमाग इंद्र का आया कि इन अहीरों की बस्तियों को, गायों को और इस पर्वत को जिसकी पूजा की गई, इसको वज्र से मार मार करके मैं धूल बना दूंगा और प्रलय कालीन बादल भेजा कि तुम लोग बहा दो, नाम निशान पता न लगे कि ब्रज कहाँ है, कहाँ ये गोप है और कहाँ गोवर्धन है। तो सबसे पहले खबर स्वर्ग में गई, स्वर्ग का राजा विरुद्ध बन करके आ गया, लेकिन भगवान ने 7 दिन 7 रात पर्वत धारण किया, क्योंकि इतने ही दिन तक वर्षा हुई थी, आंधी चली थी, तूफान, और ब्रजवासी सब गिरवर नीचे, सब ब्रजवासी नाच गा रहे थे, आनंद में थे, गौएं भी आनंद में थे। जब स्वर्ग में यह न्यूज सबसे पहले ही पहुंचा तो ब्रह्मा जी और सब जानते ही हैं, भगवान शिव को पता है और उस लोक के सभी प्राणियों को, यहां पर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका जस स्वर्ग में गया हो। स्वर्ग की बात छोड़ दीजिए, अमेरिका में भी नहीं पहुंचता है, अमेरिका में भी सब नहीं छपता है कि यहां ये हो रहा है वो हो रहा है, वहां का अपना समाज है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में ही जस नहीं फैलता है। और किसी किसी का जस, एक बार हम लोग गए थे पहाड़ पर, एक चौधरी जी थे, तो मैंने उससे पूछ दिया जब हम लोग प्रचार करते हैं उनके दरवाजे पर गए थे, पूछे कि आपका नाम, तो कोई सिंह नाम था इसमें याद नहीं आ रहा है, गांव का भी नाम याद नहीं आ रहा। तो एक पहाड़ के स्तर से एक धनी आदमी थे चौधरी जी, तो हमने पूछ दिया ऐसे ही स्वाभाविक जानने के लिए, आपका नाम क्या है। तो कहते हैं हमारा नाम रुवर जात पूछता नहीं, हमारा नाम दुनिया भर में फैलोग, ऐसे होता दुनिया भर में नाम फैलो, तो लगे गिना नहीं दुनिया के सब शहर और गांव को। अधौरा में पूछी, कोल्हुआ में, भिफोर में, कहाँ का, दोहरा में, सोहदाग में, लोना में, कहा कि हाँ यही लंदन और सिडनी, मेलबोर्न और न्यूयॉर्क, यही सब फैला है। उनके दुनिया का मतलब था पूरे पहाड़ में जानते हैं। सब भभुआ में भी नहीं जानते हैं, दुनिया इतने नहीं है। तो इसी तरह से किसी का नाम बिहार में फैला हुआ है, किसी का नाम यूपी में फैला है, किसी का नाम राजस्थान में है, किसी किसी का नाम राज्यों की सीमा को पार कर गया है, भारत में है, बस उसी में समझते हैं महाकीर्तिमान व्यक्ति हैं। और हमारी सभा में इतने हजार लोग आ जाते हैं जब प्रवचन करते हैं, राजनीतिक प्रवचन, इतने लोग आ जाते हैं, लेकिन जानते हैं राजनेताओं की सभा में लोग जुटते हैं तो सभी भक्त नहीं जुटते हैं उनके, कुछ लोग यह देखने के लिए आते हैं कि क्या गलत बोला है, सब प्रेमी ही नहीं आते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कोई भी नेता भाषण करे वो सुन ही लेते हैं, वही आदमी जुटेंगे, कोई कहीं प्रवचन करते ये नहीं है कि अब इसके पार्टी के ही लोग जुटते हैं, सिर्फ विरुद्ध पार्टी के भी लोग जुटते हैं, है ना। लेकिन वो आदमी समझ लेता है कि इतनी लोग हमारे पीछे हैं, ये भ्रम है, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। वास्तव में किसी को देखना चाहिए तो भगवान कृष्ण को, क्या उनका यश है, क्या उनकी सुंदरता है। जहां गए वहां सभी लोग मोहित हो जाते थे, जहां भी गए। यहां तक कि पलक बनाने वाले ब्रह्मा को स्त्रियां गाली देती थी कि आंख पर पलक क्यों बनाया, पलक भर दर्शन व्यवधान उनको सहन नहीं होता, इतनी सुंदर थे, इतने सुंदर हैं, थे नहीं कह रहे, इतने सुंदर। और गायक, गायक इतने सुंदर गायक हैं, अपने बांसुरी पर जब तान छेड़ते हैं तो कौन नहीं मोहित हो जाता। एक कवि ने लिखा है कि श्रीकृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, रूप गोस्वामी पाल ने उसको उद्धृत किया है, कोटेशन दिया है, श्रीकृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं तो भगवान शेष नाग झूमने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास दौड़े कि कृष्ण की बांसुरी रुकवाई नहीं तो भूमंडल गिर जाएगा। शेष नाग मस्ती में हो रहे हैं पूरा, भगवान के बांसुरी का गीत वहां तक पहुंचा है और उसको सुन करके भगवान शंकरसन झूम रहे हैं। तो मस्तक से फण से कहीं भूमंडल गिरा तो सब चौपट हो जाएंगे, दुनिया नष्ट हो जाएगी। इसीलिए ब्रह्मा जी से कहा गया, दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं देवता लोग की कृष्ण की बंसी वादन लीला को रुकवाइए, तो बहुत भारी अनिष्ट हो जाएगा। ऐसे गिरा नहीं भूमंडल, तो बहुत संभाल करके झूम रहे थे। तो ये केवल कविता मात्र नहीं है। और श्री गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण आप बांसुरी बजाइए सब समय, मतलब मना नहीं है, लेकिन भोजन पकाते समय मत बजाइए। क्यों? कि भोजन बनाते समय सूखी लकड़ियों में रस चुने लगता है और आग बुझ जाती है, हम लोग फूंकते फूंकते लाल आंखें वाली हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। इसलिए भोजन बनाते समय मत बजाइए, और समय में बजाइए कोई बात नहीं। मुरहर रंधन समय मा कुरु मुरली नवम मधुरम, रंधन समय सब भगवान की लीलाएं हैं, यह है आज भी है, भगवान की नित्य लीला है। यहां से थोड़ी ही दूर दिल्ली के पास ब्रजमंडल है जहां भगवान ये सब लीला किए थे, प्रकट हुए थे, सौंदर्य की लीला। ज्ञान वैराग्योश्चैव, वैराग्य ज्ञान कीर्ति जससा जस फैला। तो ऐसा कीर्तिमान व्यक्ति कोई नहीं है, न देवताओं में है, न मनुष्यों में, न दैत्य समाज में, कोई नहीं है। इतना आकर्षक, इतना सुंदर, अपने मित्र से बात कर दिए आधा एक घंटा के लिए, वो सबसे बड़ा ज्ञान ग्रंथ है। इससे ज्ञान प्रकट होता है भगवान का, और वह ज्ञान का ग्रंथ आज भी है भगवद गीता। पूर्ण ज्ञान, ईश्वर का क्या स्वरूप है, ईश्वर कौन है, भगवान अपने विषय में बोलते हैं, जीव क्या है, जीव और ईश्वर के साथ संबंध क्या है, यह जगत क्या है, प्रकृति क्या है, और काल क्या है, कर्म क्या है, इस पर पूर्ण प्रवचन भगवान ने किया है। तो ये मैं बलि महाराज पर बोल रहा था कि श्री राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण इतना कृतज्ञ है कि बलि महाराज ने इतना सम्मान किया, राज दिया, पूजा के समय भोग सामग्री दिया था, लेकिन इसका एहसान कृष्ण कुछ नहीं माना, ब्राह्मण बनकर के आया था। अरे कृष्ण ब्राह्मण में जन्म ले, चाहे क्षत्रिय में, चाहे गोप में, ये इसका स्वभाव यही रहेगा, इसलिए हमको पूरा पता है कृष्ण के बारे में, हमसे कुछ बात मत करो, भौरे से कह रहे हैं, हम अब मानने वाली नहीं। कुछ ब्रज भाषा के ये पृष्ठ 32 पर है और 52 नंबर का पद है। जो पै को मधुबन लाए जाए, कोई गोपी कह रही है कि मैं श्याम सुंदर को पत्र लिख करके रखी हूं, यदि कोई मधुबन जा रहा है या इस पत्र को ही लेकर के जाए, मधुबन मतलब मथुरा, पतिया लिखी श्याम सुंदर को करकंकन देऊं जाए, यदि कोई इस पत्र को ले जाएगा तो मैं अपने हाथ में पहनी हुई सोने की चूड़ी दे दूंगी उसको। करकंकन देऊं जाए, तो पत्र में क्या लिखी है बोल रही है। अब वह प्रीति कहां गई माधव, मिलते बेनु बजाय, ये पत्र में लिखा है, हे माधव अब वह आपकी आपका प्रेम कहां चला गया, पहले आप बांसुरी बजाते हुए मिलते थे, नयन नीर सारंगलिप भींजय दुखसो रैन बिहाय, नयन नील सारंग रिपु भींज, सारंग रिपु का क्या मतलब है, सूरदास जी का जो गीत है उसमें यह अर्थ लिखा हुआ है, दुखसो रैन बिहार, शून्य भवन मुहि खरो डरावे यह ऋतु मन न सुहाय, सूरदास यह समव गए थे पुनि कह लई हैं आए। इस पद को भी गाइए, मैं तो अर्थ करूंगा बाद में। नयन नीर मतलब आंसू से सारंग रिपु भींज, सारंग कमल को कहते हैं और कमल का शत्रु है चंद्रमा, रात में कमल नहीं खेलते हैं, इसलिए चंद्रमा को सारंग रिपु कहा गया। तो आंखों के पानी से आंसू से सारंग रिपु भींज रहा है, मतलब चंद्रमा, चंद्रमुखी है गोपियां, इनका मुख बहुत सुंदर है, तो हमारा मुख चंद्र भींग रहा है, दुखसो रैन बिहार, बहुत कष्ट से हमारी रात बीतती है, शून्य भवन मोहि खरो डरावे यह ऋतु मन न सुहाय, भवन शून्य लग रहा है मुझे, खड़े खड़े डरवा रहा है, और यह ऋतु मन न सुहाय, ये ऋतु अच्छी नहीं लग रही है, ये मौसम अच्छा नहीं लग रहा है, सूरदास यह समव गए थे पुलि कह लही है आए, हे श्याम सुंदर जब इस समय बीत जाएगा तो फिर अब आप करके क्या करेंगे, समय बीतने का मतलब कि बहुत अधिक देर करेंगे, तो गोपी कहती है कि मेरा मरण निश्चित है, मैं मर जाऊंगी तो आप आकर क्या करेंगे, सूरदास यह समव गए थे पुनि कह लई है आए। कोई गोपी भगवान कृष्ण के विरह में बहुत विकल है, विकल है तो पत्र लिखी श्याम सुंदर को मथुरा में भेजने के लिए, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है, तो कहती कौन कोई मिले, तो उसको मैं इतना तक कि इस पत्र को ले जाने का भार अपने हाथ का सोने का कंगन देना चाहती हूं, तो इतनी विकलता है, चाहते किसी तरह से कोई पत्र ले जाए, तो जो पे को मधुबन ले जाए, कोई है जो इसको ले जाएगा मधुबन, यदि हमारे पत्र को कोई मथुरा ले जाएगा, पतिया लिखी श्याम सुंदर को करकंकन देऊं, ताय, उसको मैं हाथ का कंकड़ दूंगी। पत्र में लिखी है कि हे श्याम सुंदर, एक समय इतना प्रेम था कि आप बांसुरी पर गाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए आते थे, हमसे मिलते थे। तो हे श्याम सुंदर, अब वह प्रेम कहां चला गया, अब वह प्रीति कहां गई माधव, मिलते बेनु बजाए, कहां चली गई प्रीति। नयन नील सा रंग रिपु भींजे, दुख सुन नयन बिहार। नयन के आंखों के आंसुओं से हमारा चंद्रमुख हमेशा भींगता रहता है, मतलब मैं रोती रहती हूं और बड़े दुख से मेरी रात बीतती है। दुख सो रायन बिहार, शून्य भवन मोहि खरो डरावे, यह ऋतु मन न सुहाय, सूरदास यह समव गए थे, पुनि कह लई है आय। जब मर जाएगी गोपी तबा तो क्या करेंगे आकर, ये भाव है इस पद का। श्याम को यह परेखो आवे, परेखो का अर्थ है कई कई अर्थ होता है, परेखो का अर्थ है परीक्षा, परेखो का अर्थ है तब उनके मन में ये बात आ रही होगी। श्री गोपीजन ब्रज में है, तो श्री कृष्ण के मन में क्या आ रहा होगा, क्या रहा, पहले क्या थे अब क्या हो गए, विश्वास विश्वासास्पद भी अर्थ होता है, इसको सुन लीजिए और फिर से गाया जाएगा। श्याम को यह परेखो आवे, यही पश्चाताप हो रहा है श्याम के विषय में, कैसे उनका स्वभाव बदल गया। कतव प्रीति चरण जावक कृत, अब कुब्जा मन भावे। श्री राधा रानी कहती हैं कि पहले वे हमारे चरण में महावर लगाया करते थे, मैं इतनी प्यारी थी, हमारे चरणों में गिरकर हमें मनाते थे और जावक लगाते थे, महावर लगाते थे, मेहंदी लगाते थे हमारे चरण में, और अब ऐसा स्वभाव बदल गया, अब कुब्जा मन भावे। मैं पहले उनके लिए सबसे बड़ी प्यारी थी, लेकिन अब कुब्जा अच्छी लग रही है। तबकत पानी धरे गोवर्धन, कतब्रज पति ही छुड़ावे। उस समय ऐसा स्वभाव था कि सबकी रक्षा के लिए हाथ में गोवर्धन धारण किए, कितना प्रेम था ब्रजवासियों से, कितनी दया थी उनमें। तबकत पानी धरे गोवर्धन, कतब्रज पति ही छुड़ावे, इसका अर्थ कहां उस समय ये लीला किए, उस समय गोवर्धन उठा लिए हम लोगों की रक्षा के लिए, और नंद बाबा को वरुण के लोक से छुड़ा करके लाए, ब्रजपति को वरुण लोक से छुड़ा करके लाए। कतव बेनु अधर मोहन धरी, और क्या वो समय था जब श्याम सुंदर हम सबका नाम ले लेकर के बांसुरी पर बुलाते थे, नाम रखते, कतव बेनु अधर मोहन धरी, लय लय नाम बुलावे, तबकत लाड़ लड़ाए लड़के हंसी कंठ लगावे, फिर कोई गलत छुपा है, तबकत लाड़ लड़ाई लाड़ ले हंसी हंसी कंठ लगावे। उस समय जब ब्रज में थे, कितना स्नेह करते थे, प्यार करते थे, लाड़ लड़ाते थे, स्वयं हम लोगों के परम लाडले थे, और हमें हंस हंस कर कंठ लगाते थे, हंसी हंसी कंठ लगा। अब समय हो गया कि अब वह रूप अनूप कृपा करी, नयनन हु न दिखावे। एक दिन हमारा आलिंगन करते थे, कंठ लगाते थे, गलवाही देकर चलते थे, आज उस रूप को दिखा तक नहीं रहे, दर्शन तक नहीं, अवोह रूप अनूप कृपा करी नयनन हुन दिखावे, कृपा करके अब दिखाते भी नहीं। जामुख संग समीप रैन, जामुख संग समीप रैन दिन, जामुख संग समीप, जामुख संग समीप नयन नयन, जिनके मुख के समीप हमारे नयन रहते थे, हमारे नयनों के आंखों के सामने अपना मुख रखते थे, सोयब जोग सिखावे। अब दूर से ही पत्र लिख करके दूत भेज करके अब जोग की शिक्षा दे रहे, हमारे मुख का संयोग उनके मुख से रहता था तो अब जोग सिखा रहे हैं। जिन मुख दय अमृत रसना भरी सो कैसे विष प्यावे, जिस मुख में कोई किसी को दूध देता है पिलाता है या अमृत पिलाता है, फिर वही व्यक्ति उसको कैसे विष पिला रहा है। भगवान के भक्ति के आगे, दर्शन के आगे ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की बातें बिल्कुल विष है, वास्तव में पॉइजन। जो अमृत पिला रहा था, एक बार अपने सौंदर्य अमृत को पिला रहा था मुख दिखा दिखा कर, तो कैसे विष पिलाने लगा। कर मीणति पछतात हियो भरी, क्रम क्रम मन समझा रहे, हाथ मलती है गोपी पछता रही है, बारी बारी से अपने मन को समझाना चाहती है, भगवान का रूप देखने के लिए तड़प रही है, गीत सुनने के लिए। पर सूरदास यह भांति, यही भांति बिजोगिनी ताते अति दुख पावे, इस तरह से बहुत दुखी है और यही सोचा करती है। कभी गोवर्धन लीला, कभी रास लीला, गोवर्धन धारण लीला, रास लीला, मुरली बजाना, और यह इतना सुखद है, अमृतमय है, भगवान कृष्ण से संबंध इतना अमृतमय है कि इसके आगे और जो भी बातें हैं, यह योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, सब जहर है, विष। उद्धव जी इसका उपदेश किए हैं, भगवान कृष्ण सिखाए हैं उनको, तो इसको श्री गोपियां विष बता रही हैं। इससे स्पष्ट ध्वनित हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का मार्ग छोड़ करके और जो भी मार्ग है वो विष है। जिनमुख दय अमृत रसना भरी सो कैसे विष प्यावे, एक बार अमृत दिए, अपने मुख का संगीत दिए, वेणु में हमारा नाम लेते थे, गाते थे, हमारे कान सुनते थे, और सदा हम लोगों के सामने रह करके अपना सौंदर्य अमृत पिलाए, अपना मुख दिखाए, वे कैसे इस बात को कह रहे हैं कि ध्यान करके जियो, हमारा ध्यान करो, मैं सब जगह हूं, सब में हूं। तो ये जो अब ध्यान, गीता का छठा अध्याय पढ़ाने लगे, ध्यान जो श्री कृष्ण को साक्षात देखे हैं, उनको कह दिया जाए कि आंख बंद करके अब देखिए, कितना दिनों व्यक्ति जिएगा, संतोष रखेगा। बांके बिहारी जी का पट खुले और कोई कहे कि आंख बंद करके उनको देखिए, अरे बाप, आंख बंद करके देखें कि आंख खोल करके देखें, और श्री कृष्ण की कथा सुने कि वेदांत पढ़े, आप जो है देखिए इस तुलना को। सूरदास जी का यह पद है जो गोपियों के तरफ से लिखे हैं, गोपियां ये कहती हैं, कहां वह दया, कहां वह स्नेह है जो पहले गोवर्धन उठा लिए, नंद बाबा को छुड़ाने के लिए वरुण लोक गए, और अब इतने कठोर हो गए कि हमारी सुधि नहीं ले रहे हैं, जैसे पहले पद में आपने सुना है कि गोपी पत्र लिखी है, वो कुछ नहीं लिखे हैं, तो पत्र ले जाने वाला कोई नहीं है, इतना हैवी फीस दे रही है पत्र ले जाने के लिए। यह है भगवान से प्रेम। पत्र की पत्र आजकल लिफाफा कितने में जाता है, हैं? स्पीड पोस्ट नहीं, सामान्य कितने का टिकट? 3 रुपये। सोने का कंगन कितना महंगा पड़ेगा? लेकिन गोपी को तो इतना भगवान से प्रेम है, वो ये नहीं देखते हैं कि हमारा कितना धन खर्च होगा, क्या होगा। कोई पत्र ले जाए तो पत्र वाहक को मैं अपने सोने का कंगन दूंगी। एक दिन ऐसे पत्र भेजना पड़ रहा है, और एक समय ऐसा था कि ब्रज में अपने आप जंगल में घूमते ही रहते थे, तो पत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। हंस हंस करके कंठ लगाते थे। ये पद बैठ नहीं रहा है। जामुख संग समीप नयननी, जामुख संग समीप ही नयननी। हाँ, नयनन शब्द है, नयननी। रैन दिन पढ़े उसको, जो मुख रात दिन हम लोगों के समीप रहता था, रात में तो रहता ही था रासलीला में, और दिन में भी ऐसा अवसर मिलता था। जामुख संग समीप रैन दिन स्वयं जोग सिखावे। इसको गाइए, बजाने में थोड़ा और उत्साह से बजाओ, मादल मत पूजो। श्री कृष्ण की निष्ठुरता पर आश्चर्यचकित होती हुई गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो श्री कृष्ण की ओर से इसी बात का दुख है। यहां पर एको का था दुख, श्री कृष्ण के विषय में सोच करके दुख, इतने ही दुख, ये दुख है कि उन्होंने इतना अधिक प्रेम बढ़ाकर उसे कैसे भुला दिया। कहां तो उनका और हमारा प्रेम इतना था कि हमारे चरणों में प्रेम बस महावर लगाया करते थे, और कहां अब ऐसी उदासीनता कि हमें छोड़कर के कुब्जा ही उनकी प्यारी बन गई। यदि ऐसी ही बात थी तो उन्हें हमारा कुछ भी ध्यान नहीं था, तब गोवर्धन पर्वत की उदाहरण की उसी समय मर जाने दिए होते। मर जाने देते तो सबको उनके विरह का यह विषम दुख नहीं सहना पड़ता। तब क्यों दया आ गई थी? जब नंद बाबा को वरुण में डूबने से बचाया था तो क्यों बचाया था? उस समय श्रीकृष्ण अपने अधरों पर बंसी धारण करके हमारा नाम ले लेकर बुलाया करते थे। उस समय तरह तरह के प्यार दिखा करके, हंस हंस करके, हमें गले लगाकर ऐसा प्यार क्यों बढ़ाए? पहले तो इतना प्यार बढ़ा लिया और अब अपने उस अनोखे रूप को हमारे मित्रों के सामने भी नहीं कर रहे हैं। हम जिस मुख के पास दिन रात एक साथ ही रह रहे थे, उनका वही मुख अब हमें योग की शिक्षा दे रहा है। जिस मुख में उन्होंने अपनी जिह्वा से अमृत बरसाया था, अर्थात मीठी मीठी बातें की थी, उस मुख से वे विष भरकर हम क्यों पिलाना चाहते? हम हाथ मिलती हैं, पश्चाताप करती हैं, हमारा हृदय भर आता है। हम धीरे धीरे करके अपने मन को समझाने का असफल प्रयास करती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगे कि हम इस प्रकार की वियोगिनी हैं, इसीलिए हम बहुत अधिक दुख पा रही हैं। भाव यह है कि हमारा श्रीकृष्ण से पहले बहुत गहरा और समीप का प्रेम था, इसलिए उनका वियोग हमें अपेक्षाकृत अधिक दुख दे रहा है। कम प्रेम का कम वियोग दुख और अधिक प्रेम का अधिक दुख होता है। गाइए और बजाइए ठीक से। कर मिलती, मिलती का मतलब मासन मलना, हाथ मलना, पछताती, पछताती पी है। मैं आगे से गाऊंगा, पीछे सब लोग आइए। छाड़ी कुल बेद तेरी चेरी भई चाह भरी,
छाड़ी कुल बेद तेरी
गुरु जाना परी जाना लोक लाज ना सिंह,
गुरु जाना
चात की त्रिशित तुव रूप सुधा है तो नीत,
चात की त्रिशित तुव रूप सुधा है तो नीत,
पाला पाला दुसह दियोग दुख गा सिंह, हरिचंद एक व्रत नेम प्रेम ही को लीन,
हरिचंद एक व्रत प्रेम
रूप की तिहार ब्रज रूप हासिंह,
रूप की तिहार
जाय लै रे प्राणन बचाय लै लगाय कंठ,
जाय लै रे प्राणन बचाय लै
लगाय कंठ, रे नंदलाल तेरी नोल लई दासिंह,
रे नंदलाल तेरी सिंह।
छाड़ी कुल वेद तेरी चेरी भाई चाह भरी, हे श्याम सुंदर मैं अपने कुल के धर्म को और वेद धर्म को, लौकिक धर्मों को और वेद वैदिक धर्मों को छोड़ करके तेरी चेरी भाई तेरी दासी हो गई, चाह भरी और मैं प्रेम से भरी हूँ, चाह मतलब प्रेम। छाड़ी कुल वेद तेरी चेरी भाई चाह भरी, गुरुजन परिजन लोक लाज ना सिंह, और मैंने गुरुजनों को छोड़ दिया, परिजनों परिवार के लोगों को छोड़ दिया, लोक लाज का नाश कर लिया। चातकी त्रिशी तत्व रूप सुधा हेत नित, मैं चातकी हूं और आपके रूप सुधा को चाहती हूं। घनश्याम किस कृष्ण को कहते हैं, इस भाव से कहते हैं मैं आपके रूप सुधा के लिए बहुत प्यासी हूं, चातकी की तरह हूं, पल पल दुसह वियोग दुख दासी हूं, एक एक क्षण में पल पल मैं वियोग के दुसह दुख से ग्रस्त हूं, वियोग दुख ने घेर लिया है। हरिचंद एक व्रत नेम प्रेम ही को लीनो, हरिश्चंद कवि का नाम है, महान भक्त थे, तो ये कहते हैं, इनके शब्दों में गोपियां कहती हैं, हे प्रियतम श्याम सुंदर हम एक ही व्रत ली हैं, वह है प्रेम का व्रत, रूप के तिहारे ब्रज भूप हाँ उपासी हूं, आपके रूप के लिए मैं उपवास कर रही हूं, जैसे कोई पानी के बिना तड़प रहा हो इस तरह से मैं तड़प रही हूं। ज्याय ले रे प्राणन, हे श्याम सुंदर मुझे जिला लीजिए, अर्थात अपना रूप दिखा करके हमें जिला लीजिए, हमारा प्राण बचा लीजिए। मेरे प्राण तभी बचेंगे जब आप हमको अपने कंठ से लगाएंगे, गले से लगाएंगे। जाय लय रे प्राण न बचाए लय लगाए कंठ, एरे नंदलाल तेरी मोल लय दासी। मैं आपकी दासी हूं, आपकी खरीदी हुई दासी हूं, कृपया आप दर्शन दीजिए। फिर से इसको गाएंगे सबको। छाड़ी को लबेद तेरी चेरी भई चाह भरी, छाड़ी को लबेद गुरु जाना परी जाना लोक लाजना सिंहा, गुरु जाना परी जाना सात की त्रिशित तुव रूप सुधा हेत नीत, सात की पल पल दुसह वियोग दुख गा सिंह, पल पल दुसह वियोग हरिचंद एक व्रत नेम प्रेम को लीन, हरिचंद एक व्रत रूप की हारे ब्रज रूप रूप सिंह, जैसे कोई व्रत करता है एकादशी व्रत, ये कोई व्रत जिसमें वो खाता नहीं है पानी नहीं पीता, उपवास करता है, तो गोपी कह रही है कि मैं ये कहीं व्रत ली हूं, वे प्रेम का व्रत और उपवास कर रही हूं। तो उपवास श्री कृष्ण ही करा रहे हैं, मतलब आपके रूप की प्यासी हूं, रूप सुधा को पीना चाहती हूं। हाँ का अर्थ होता है मैं, रूप की तिहारे ब्रजभूप हाँ उपासी हूं, एक हाँ का अर्थ है हूं लास्ट वाले का, एक हों का अर्थ मैं हूं। रूप की तिहारे ब्रजभूप हों उपासी हूं, मैं आपके रूप की उपासी हूं, उपासी का अर्थ उपवास कर रही हूं। तो आप पिलाइए, ऐसा उपवास हो रहा है कि इतना ज्यादा हो जाएगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति पानी नहीं पीता है, बहुत दिन उपवास रह जाए तो मर जाता है। तो अब बहुत अधिक हो गया, जाय ले रे प्राण न बचाय ले लगाए कंठ, एरे नंदलाल तेरी मोल लय दासी हूं। हरिचंद एक व्रत नेम प्रेम को लीना, हरिचंद रूप की तिहारे ब्रज भूप उपासी हूं। जाय लय रे प्राण बचाय लय लगाय कंठ, जाय लय रे प्राण तेरे नंद लाल तेरी मोल लय दासी हूं। तेरे नंद लाल तेरी मोल लय दासी हूं। भगवान के प्रति ऐसा ही प्रेम उत्पन्न करने के लिए सब बातें सुनी जाती हैं। यदि व्यक्ति निरंतर इन सब कथाओं को बातों को सुना करे तो गोपियों जैसा भाव या ब्रज के सखाओं माताओं जैसा भाव उत्पन्न होने लगता है। उपाय यही बताया गया, श्रवण और कीर्तन। श्रवण और कीर्तन जल कर ऐसे चल। प्रारंभ में इस प्रकार के भाव का उद्रेक नहीं होगा, लेकिन इसका उपाय है इसको बारंबार पढ़ना, सुनना, कीर्तन करना। यद्यपि हम लोगों में ऐसा प्रेम नहीं है, लेकिन हम लोग इसको सुन रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे प्रेम प्राप्त होता है। तो कोई गोपी कह रही अपने सखियों से, इतना विरह का दुख है यह। श्री कृष्ण से विरह तो है, लेकिन विरह की अनुभूति होना यही भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह के अनुभव में हमेशा रोते रहते थे। 12 वर्ष तक वे लगातार रोए, कोई दिन बाकी नहीं रहा। अरे गंभीरा मंदिर में जब रोते थे तो बाहर से सुनने वाले लोग ऐसा समझते थे कोई स्त्री रो रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, राधा भाव में रो रहे थे। तो ऐसे रोते थे कि बाहर सुनने वाले यही जानते थे कोई स्त्री रो रही है। हमेशा हा ब्रजनंदन, हा प्रियतम, हे प्राण प्यारे, यही कह करके रोते रहते, क्योंकि राधा रानी के भाव में रोते थे। तो ये विरह की अनुभूति होना ये उत्कृष्ट भक्ति है। भगवान के संयोग की भावना करके उनके साथ मिलना, उनके साथ खेलना, उनको खिलाना, सेवा करना, ये तो है ही, परंतु वो सुलभ नहीं है। तो गोपियों के इस उद्गार को और महाकवियों के इस भाषा को पढ़ने पर, सुनने पर, धीरे धीरे इस कठोर हृदय में वो भाव आने लगते हैं। तो इसके नीचे एक पद है, उसको गाएंगे। अंग अंग छाई है उदेग मुरझानी महा। अरे सखी, हमारे शरीर के अंग अंग में उदेग मुरझाने, चिंता का दुख छाया हुआ है, हमारा सारे शरीर मुरझा गया है। सांस लैबो आली गिरी हुते गरुओ लगाए, यहां तक कि सांस लेना पहाड़ से भी भारी लग रहा है। गिरी हीते गरुओ लगाए, गर्व माने गर भारी गर्व। सांस लैबो आली गिरी हिंते गर्व लगे, आली माने सखे। सांस लेना भी पहाड़ जैसा भारी लग रहा है, सांस लिया नहीं जा रहा है। सुंदर सुजान प्राण प्यारे के निहारे बिना, सुंदर सुजान, सुजान मतलब सुज्ञान, प्राण प्यारे श्याम सुंदर को देखे बिना, दीठी तो अदीठी सी उजार घरुओ लगे। दृष्टि से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, अदृष्टि जैसी हो गई है, और भरा हुआ घर भी उजाड़ लग रहा है। घर बिल्कुल सुना सना उजाड़ा हुआ लग रहा है। जोबन स्वरूप गुण सूल से सलत गा, और ये सब तो फीके लग ही रहे हैं। हमारी जवानी और सुंदर रूप, स्वरूप स्वरूप कहते हैं, गुण हमारे पास जो भी सुंदर शरीर है, जवानी है और गुण है, ये सब सूल की तरह सलत हमें दुख दे रहे हैं। लगता है कि ये सूल गड़ाया जा रहा है, सब बेकार है। हमारा जौवन और हमारे सुंदर रूप और हमारा गुण, ये सूल से सलत गात, हमारे शरीर में सूल की तरह चुभ रहे हैं। तूल तीन कालों है गुमान हरुओ लगे। पहले मैं बड़े गुमान में रहती थी कि मैं श्री कृष्ण की प्यारी हूं, तो ये गुमान, ये गर्व रुई के तिनका से भी हल्का हो गया है। इतना गर्वीले थे, रुई से भी हल्का हो गया मेरा गुमान। हलुओ मने हल्का, और जे स्वाद घने आनंद विचारे कौन। और नाना प्रकार के संसारिक स्वाद इसका तो कौन विचार करे, अच्छा शब्द सुनना, खाना पीना, ये तो फीके सब हो गए। यहां तक कि विरह विषम जोर जीवो करवो लगे, विरह के विषम ज्वर के कारण जीना भी कड़वा लग रहा है। जब बुखार किसी को बहुत देर तक आ जाता है तो उसके मुख का स्वाद बिगड़ जाता है, कोई चीज खाता है तो तीता लगता है। तो विरह का ज्वर ऐसा है कि जीवो माने जीना भी कड़वो लगे, बहुत तीखा लग रहा है, जीने की इच्छा नहीं है, जीना भी तीखा लग रहा है। इसको गाएंगे सब लोग, अंग अंग छाई है उदेग मुरु झानी माहा, अंग अंग छाई है अंग अंग छाई है उदेग मुरु झानी माहा, अंग अंग छाई है सांस लैबो आली गिरी हुते गारू लगे, सांस लैबो आली सांस लैबो आली गिरी हुते गारू लगे, सांस लैबो सुंदर सुजान प्राण प्यारे के निहारे दीन, सुंदर सुजान सुंदर सुजान प्राण प्यारे के निहारे दीन, सुंदर सुजान दिठि तया दिठि सी उजार घरू लगे, दिठि तया दिठि सी उजार, दिठि तया दिठि सी उजार घरू लगे, जो बना सारूप गुण सुल से सलत गात, जो बना जो बना सारूप गुण सुल से सलत गात, जो बना सारूप गुण तुल तीन कालो है गुमान हरू लगे, तुल तीन कालो है गुमान हरू लगे, और जे सवाद घन आनंद विचारे कौन, और जे सवाद और जे सवाद घन आनंद विचारे कौन, और जे सवाद विरह विषम जोर जीवो करू लगे, विरह विषम जोर विरह विषम ज्वर जीवो करू लगे, जय श्री राधा रानी की, जय श्रील प्रभुपाद की, जय हरे कृष्ण।